जाति व्यवस्था वर्ण संकर की अवधारणा भूमिका प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था संस्करण पर आधारित होती है, अर्थात प्रत्येक समाज में लोगों की सामाजिक स्थिति श्रेष्ठता और निम्नता पर आधारित होती है। लोग किसी से श्रेष्ठ और किसी से निम्न होते हैं। इस सामाजिक संस्करण के अंतर्गत लोगों के कार्य, उनकी सामाजिक भूमिकाएं तथा दूसरों की तुलना में उनकी सामाजिक स्थिति निर्धारित कर दी जाती है। इसके कारण लोग विभिन्न वर्गों में बंट जाते हैं। समान स्थिति वाले वर्ग तथा ऊंची निची स्थिति वाले वर्ग सामान्यतः आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, शिक्षा पद तथा आयु के आधार पर व्यक्तियों की ऊंची निची तथा समानता वाली सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। इन आधारों पर निर्धारित संस्करण में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इनके अंतर्गत निर्मित वर्ग खुले होते हैं। कर्म योग्यता और परिश्रम द्वारा व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। भारतीय सामाजिक संगठन की यह विचित्र विशेषता है कि इसमें संस्करण के निर्धारण में अधिक आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, आयु, पद और शिक्षा से अधिक महत्व जाति का है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो विश्व के किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलती। यह अपनी तरह की एक भिन्न और रोचक संस्था है। भारत में इस व्यवस्था की जड़ इतनी गहरी है, इसने भारतीय मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य धर्मावलंबियों तक को प्रभावित किया है। मुसलमानों में 94 जातीय समूह पाए जाते हैं। प्रारंभ में यह इतनी जटिल नहीं थी जितनी वह आज है। कालांतर में जातियों और उपजातियों की संख्या में वृद्धि के साथ यह जटिल होती गई। जाति की परिभाषा एवं अर्थ। जाति शब्द अंग्रेजी के कास्टे शब्द का हिंदी रूपांतर है। कास्ट पुर्तगाली शब्द से लिया गया है। कास्ट का अर्थ प्रजाति, जन्म और भेद है। कास्टा शब्द का सबसे पहले सेसिया डी ओर्टा ने प्रजाति समूहों के विभेद के अर्थ में किया प्रयोग में किया। बाद में प्रजाति विभेद को स्पष्ट करने के लिए फ्रांसीसी विचारक अब्बे दुबोय ने इसका प्रयोग किया। जाति की जो परिभाषाएं की गई है तथा उसके जो लक्षण हैं, उन्हें देखने से स्पष्ट हो जाता है कि कास्टा शब्द से उनका बोध नहीं होता, इससे प्रजाति भिन्नता का बोध होता है। जाति व्यवस्था प्रजाति भिन्नता को नहीं अपितु जन्म से निर्धारित होने वाले सामाजिक अस्त्रीकरण की व्यवस्था है। कुछ लोग संस्कृत के जात शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। जात से जन्म अथवा जन्म से परिवार का बोध होता है। जाति शब्द की जो परिभाषाएं की गई हैं तथा उनके जो लक्षण हैं, उनका मेल इसी संबंध से शब्द से खाता है। जाति की अनेक परिभाषाएं की गई हैं। मजुमदार और मदन ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है कि जाति एक शब्द वर्ग है। कुले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो हम इसे जाति कहते हैं। सर हर्बर्ट रिजले का कहना है कि जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम है जो एक काल्पनिक पूर्वज मानव या देवता से एक सामान्य वंश परंपरा या उत्पत्ति का दावा करते हैं। एक ही परंपरागत व्यवसाय को करने पर बल देता है और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान होते हैं और जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के लिए योग्य है। इस परिभाषा के दोष इस प्रकार हैं। जाति और गोत्र की अवधारणा को मिलाकर भ्रम पैदा कर दिया गया है। किसी देवता या पुरुष से वंश की उत्पत्ति को संबंध मानने वाला समूह गोत्र होता है। इस परिभाषा में जाति के केवल दो तत्वों का समावेश है। जाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है और जो एक ही परंपरागत व्यवसाय करने पर बल देता है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि कौन लोग यह राय देने में समर्थ हैं कि जाति एक संगठित सजातीय समुदाय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह परिभाषा अस्पष्ट, अधूरी तथा भ्रमोत्पादक है। इससे जाति के संरचनात्मक पक्ष का ही केवल ज्ञान होता है, इनके संस्थापक या प्रकार्यात्मक पक्ष का नहीं। इस दृष्टि से भी यह त्रुटिपूर्ण है कि इसमें जाति को एक समुदाय कहा गया है। समाज शास्त्रीय दृष्टि से समुदाय एक निश्चित भूभाग में बसा एक समूह है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है तथा जो सामुदायिक भावना और कुछ सामान्य नियमों पर आधारित या संगठित होता है। जाति के मामले में यह बात नहीं लागू होती। फ्लट ने जाति की परिभाषा इस प्रकार की है। एक जाति एक अंतर विवाही समूह या अंतर विवाही समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है जिसकी सदस्यता पैतृक होती है जिसके सदस्यों पर सामाजिक संपर्क के मामले में कुछ प्रतिबंधित होते हैं जो पैतृक व्यवसाय अपनाता है या सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है और साधारणतः सजातीय समुदाय का निर्धारण करने वाला समझा जाता है। रिजले की परिभाषा से यह परिभाषा अधिक स्पष्ट और व्यापक है तथा इसमें जाति की अनेक तत्वों अथवा लक्षणों का समावेश है परंतु यह भी त्रुटिपूर्ण है। रिजले की तरह ब्लंट ने भी जाति और गोत्र को मिलाकर एक कर दिया है जिसमें श्रम उत्पन्न होता है। उन्होंने यह भी कहने की गलती की है कि जाति एक समान उत्पत्ति का दावा करती है। वास्तविकता यह है कि जाति नहीं बल्कि गोत्र इस प्रकार का दावा करते हैं। उन्होंने भी जाति को समुदाय कहने की गलती की है। समाज शास्त्रीय दृष्टि से जाति में समुदाय के लक्षण नहीं मिलते। इन दोषों के बावजूद इस दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक महत्व है कि इसमें न केवल संरचनात्मक पक्ष का भी बोध होता है, इसमें इसके अनेक महत्वपूर्ण लक्षणों का भी उल्लेख किया गया है। यह एक अंतर विवाही समूह है। जाति की सदस्यता वंशानुगत या जन्म पर आधारित होती है। यह अपने सदस्यों पर सामाजिक सहवास के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाती है। यह एक सामान्य परंपरागत पेशे को करती है। जाति की विशेषताएं इसकी स्पष्ट परिभाषा के लिए हम विद्वानों की परिभाषाओं के साथ साथ इसकी विशेषताओं पर भी विचार करना चाहिए। जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। कोई भी व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के आधार पर अपनी जाति का परित्याग कर दूसरी जाति की सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकता। यह एक बंद वर्ग है अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं परिवर्तित कर सकता। यह अंतर विवाही समूह होता है अर्थात जाति व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। प्रत्येक जाति का अपना व्यवसाय होता है। अपने सदस्यों के लिए प्रत्येक जाति के व्यवहार संबंधी अपने कुछ नियम होते हैं। यह परिवार या परिवारों के समूह के संकलन के रूप में होती है। इसका एक सामान्य नाम होता है। निष्कर्ष विद्वानों की परिभाषाओं तथा इसकी विशेषताओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जाति जन्म पर आधारित एक बंद वर्ग और अंतर विवाही समूह है जिसका एक व्यवसाय एक नाम होता है तथा जिसके व्यवहार संबंधी कुछ नियम होते हैं। जाति व्यवस्था हिंदू सामाजिक जीवन जाति के आधार पर व्यक्तियों के बीच संस्करण अर्थात सामाजिक स्थिति की श्रेष्ठता और निम्नता का निर्धारण किया गया है। इस समाज में किस व्यक्ति की स्थिति श्रेष्ठ और किसकी निम्न है इसका निर्धारण इस बात से होता आ रहा है कि उसका किस जाति में जन्म हुआ है। अन्य समाजों में इस प्रकार के निर्धारण का आधार धन और पद है। हिंदू सामाजिक जीवन में धन और पद की तुलना में जाति का अधिक महत्व है। एक ब्राह्मण को चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो समाज में अधिक मान सम्मान प्राप्त है। एक जाति विशेष के भीतर सामाजिक श्रेष्ठता और निम्नता के निर्धारण में धन और पद का निसंदेह रूप से महत्व है। यदि एक जाति विशेष में जन्म लेने वाला व्यक्ति धनी अथवा किसी ऊंचे पद पर है तो वह उसके उन व्यक्तियों से श्रेष्ठ सामाजिक स्त्री वाला समझा जाएगा जो उससे कम धनी अथवा उससे निम्न पद पर है। रॉबर्ट बीरस्टीन ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। जब वर्ग प्रथा का ढांचा एक या अधिक विषयों पर पूर्णतः बंद होता है तो उसे जाति प्रथा कहते हैं। बीरमन के अनुसार जाति प्रणाली अंतर विवाही समूहों का संस्करण है जिसकी सदस्यता जनमानगत और अस्थायी होती है। तुर्कीम के अनुसार जाति व्यवस्था विभाजन की ऐसी प्रणाली है जिनसे प्रतिस्पर्धा के तत्व निकाल दिए गए हैं और जिसके अंतर्गत प्रत्येक जाति और उपजाति पर कार्यात्मक भूमिका अदा करती है। हट्टर ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज अनेक आत्म केंद्रित तथा एक दूसरे से पृथक इकाइयों जातियों में विभक्त रहता है। इन इकाइयों के पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांसारिक रूप में निश्चित होते हैं। ये सभी परिभाषाएं किसी न किसी रूप से अस्पष्ट अधूरी और त्रुटिपूर्ण हैं। इनके आधार पर जाति व्यवस्था की पूरी व्याख्या संभव नहीं है। इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालने के पश्चात ही इसका अर्थ स्पष्ट होगा। यही कारण है कि एनके दत्त तथा घुरिया आदि विद्वानों ने इसकी परिभाषा भाषा के पीछे ना पड़ इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना ही उचित समझा। जाति व्यवस्था की विशेषताएं, इनके दत्त के अनुसार जाति व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खाने पीने के संबंध में कुछ न कुछ प्रतिबंध होते हैं। अधिकतर जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। जातियों में ऊंच नीच का संस्करण होता है, जिसमें ब्राह्मण जाति की स्थिति सर्वमान्य रूप से सबसे ऊपर है। जन्म ही एक व्यक्ति की जाति को जीवन पर्यंत निश्चित करता है। केवल जातियों के नियमों को तोड़ने पर उसे जाति से पुरस्कृत किया जा सकता है, परंतु एक से दूसरी जाति में उसका जाना संभव नहीं है। संपूर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर निर्भर है। डॉक्टर घुरिया ने जाति व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। नंबर एक, समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था के कारण हिंदू समाज में कई खंडों में विभक्त है तथा प्रत्येक खंड के सदस्यों की सामाजिक स्थिति तथा उनके पद स्थान और कार्य निश्चित कर दिए गए हैं। हर जाति के अपने नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करना सदस्यों का नैतिक कर्तव्य होता है। यदि कोई अपने जाति के नियमों को तोड़ता है तो जाति पंचायत उसे दंडित करती है। उसके कारण उनमें सामुदायिक भावना होती है। संस्करण जाति व्यवस्था समाज का केवल खंडात्मक नंबर दो संस्करण जाति व्यवस्था समाज का केवल खंडात्मक विभाजन ही नहीं बल्कि उसमें संस्करण भी निर्धारित करती है। वह यह तय करती है कि समाज में किसकी स्थिति श्रेष्ठ है और किसकी निम्न है। यह संस्करण जन्म पर आधारित होने के कारण स्थिर और दृढ़ है। एक जाति विशेष के भीतर उपजातियों के बीच भी संस्करण होता है। जातिगत संस्करण के अंतर्गत ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ तथा शूद्रों को निम्नतर स्तर प्राप्त है। नंबर तीन, भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिए खान पान और सामाजिक सहवास से संबंधित कतिपय नियम और निषेध हैं। प्रत्येक जाति ने यह तय कर दिया है कि उनके सदस्यों को किस जाति के साथ और किस जाति के सदस्यों के हाथ का बना भोजन करना चाहिए और किसके साथ तथा किसके हाथ का भोजन बना भोजन नहीं करना चाहिए। हिंदू समाज में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ स्थिति होने के कारण उसके साथ या उसके हाथ का बना भोजन करने के मामले में किसी भी जाति पर प्रतिबंध नहीं है। साधारणतः अपने से ऊंची जाति वालों के साथ भोजन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भोजन तीन प्रकार के माने गए हैं, पक्का, कच्चा और फलाहारी। पक्के और फलाहारी भोजन के मामले में नियम लोचपूर्ण है। कच्चे भोजन के मामले में कठोर नियम है। सहवास संबंधी प्रतिबंध भी है। शूद्रों के साथ सामाजिक सहवास के संबंध में कठोर प्रतिबंध है। दक्षिण भारत में तो ये अपेक्षाकृत अधिक कठोर है। नंबर चार, सामाजिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था छुआछूत पर आधारित है। इसके आधार पर विभिन्न जातियों के लिए सामाजिक और धार्मिक नियम निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार निर्धारित किए गए हैं। अछूतों के लिए सबसे अधिक निर्योग्यताएं तथा ब्राह्मणों के लिए सबसे अधिक विशेषाधिकार निर्धारित किए गए हैं। दक्षिण भारत में तो अछूतों के लिए अपेक्षाकृत अधिक निर्योग्यताएं हैं। कुछ ही दशक पूर्व बड़ी जातियों पर उनकी छाया तक न पड़ने का भी प्रतिबंध था। वे स्वतंत्रता पूर्वक सड़कों पर नहीं निकल सकते थे। त्रावणकोर और पूना आदि की अनेक सड़कों पर उनके चलने की अनुमति नहीं प्रदान थी। मंदिरों में प्रवेश, स्कूलों में पढ़ने तथा कुआं से पानी लेने पर भी प्रतिबंध था। सरकार द्वारा निर्मित कानूनों तथा सामाजिक और राजनीतिक चेतना कारण इस प्रकार की निर्योग्यताएं समाप्त हो रही हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वे पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्योग्यताओं और विशेषाधिकार का बोलबाला अभी भी बना हुआ है। नंबर पाँच, जाति व्यवस्था में प्राय सभी जाति और उनकी उपजातियों के व्यवसाय अनुसंगत होते हैं। अपनी जाति का व्यवसाय छोड़ना उचित नहीं समझा जाता तथा प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य और दायित्व तो होता है कि वह अपनी जाति का ही पेशा करे। इस व्यवसाय के अंतर्गत ऊंची जातियों के लिए सम्मानजनक तथा छोटी जातियों के लिए निम्न स्तर के कार्य निर्धारित किए गए हैं। उद्योगीकरण, प्रौद्योगीकरण, वैज्ञानिक प्रगति तथा सामाजिक और राजनीतिक चेतना के कारण लोग अपना परंपरागत पेशा छोड़ने के लिए विवश और प्रोत्साहित होते जा रहे हैं। विवाह संबंधी प्रतिबंध। नंबर छह, विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विवाह संबंधी प्रतिबंध का सबसे अधिक महत्व है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति से बाहर विवाह की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि प्राय अपने उपजाति से भी बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं है। बेस्टर मार्ग के अनुसार अंतर विवाह जाति प्रथा का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इस नियम का उल्लंघन करना एक सामाजिक अपराध समझा जाता है। सामान्यतः जाति से बाहर विवाह करने वाले को उससे बहिष्कृत कर दिया जाता है। जाति व्यवस्था की यह विशेषता आज भी सामान्य रूप से बनी हुई है, परंतु शिक्षित और आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली परिवारों में इस प्रकार के प्रतिबंध का अंत प्रारंभ हो गया है। शिक्षा के विस्तार, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव, यातायात के साधनों में उन्नति, हरिजनों और छोटी जाति में अधिकारों के प्रति जागरूकता, हरिजन आंदोलन और सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप यह प्रतिबंध दिन प्रतिदिन ढीला होता जा रहा है। निष्कर्ष: विद्वानों की परिभाषाओं तथा विशेषताओं के विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जाति की विशेषताओं पर आधारित सामाजिक संस्करण की व्यवस्था जाति व्यवस्था है। जाति प्रथा के कार्य अथवा महत्व: आज की सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा अनुपयुक्त सिद्ध हो गई है तथा इसका विघटन प्रारंभ हो गया है। आज हिंदू समाज के लिए अनुपयुक्त और प्रतिक्रियावादी संस्था हो गई है, परंतु आज इसका अर्थ यह नहीं कि यह सदैव ही अनुपयुक्त और प्रतिक्रियावादी रही। इसके इतिहास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में इसमें सामाजिक संरक्षण शक्ति छिपी रही है। कालांतर में इस प्रथा में अनेक गंदगियां एकत्र होती गईं, जिसके कारण इसका विकृत रूप सामने आया। जाति प्रथा का लाभ अथवा महत्व स्पष्ट करने के लिए हमें उसके कार्यों पर विचार करना होगा। हंटर ने इसके कार्यों पर विचार किया है। उनके विश्लेषण के आधार पर हम इसके कार्यों का विभाजन इस प्रकार कर सकते हैं। सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में कार्य: जातीय समुदाय के लिए कार्य, सामाजिक कार्य। नंबर एक, सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में कार्य और महत्व। जाति अपने सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन संबंधित जो कार्य करती है वे निम्नलिखित है। नंबर एक, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। एक जाति विशेष में जन्म लेने के बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है। ब्राह्मण वंश में जन्म लेने मात्र से ही एक व्यक्ति हिंदू समाज में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित करती है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव अर्थात गरीबी अमीरी तथा शिक्षा के कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यद्यपि आज सामाजिक स्थिति के निर्धारण में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, पद और शिक्षा का महत्वपूर्ण हाथ हो गया था, तथापि जाति का मत अभी भी बना हुआ है। मंत्री या सरकारी अधिकारी होने से एक हरिजन की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने लगा है, परंतु यदि वह गरीब अथवा अशिक्षित है तो उसकी सामाजिक स्थिति वही रहती है जो जाति विशेष में पैदा होने से उसे प्राप्त होती है। परंतु एक ब्राह्मण के साथ यह बात नहीं है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे समाज में आज भी सम्मान पूर्वक सामाजिक स्थिति प्राप्त है। जातीय सदस्यों में निकटता अधिक निकटता का अनुभव करता है। विवाह आदि उत्सवों में तथा दुख के समय जाति के सदस्य उससे अपेक्षाकृत अधिक सहयोग करते हैं। नंबर तीन, व्यवसाय का निर्धारण। जाति व्यवस्था, जाति विशेष में जन्म लेते ही व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण हो जाता है। परिवार का परंपरागत व्यवसाय होने के कारण वह इसके बारे में जन्म से ही अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने लगता है। आज स्थिति परिवर्तित हो गई है। सामान्य रूप से सभी जातियों का झुकाव नौकरी की तरफ हो गया है। उसके नाम मिलने पर भी यह अपना परंपरागत व्यवसाय अथवा कोई अन्य कार्य करता है। जीवन साथी का चुनाव: जाति व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह व्यक्ति के जन्म से ही यह बात तय कर देती है कि उसका विवाह उसकी जाति में ही होगा। इस प्रकार जीवन साथी चुनने की समस्या का आधा समाधान तो जन्म से ही हो जाता है। नंबर पाँच, सामाजिक सुरक्षा। जाति व्यवस्था व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। संकट के समय इसके सदस्य एक दूसरे की सहायता तथा एक दूसरे से सहयोग करते हैं। आज के कुछ दशकों पूर्व राज्य तथा समाज द्वारा सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय जाति ही इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर रही थी। आज राज्य की अनेक कल्याणकारी योजनाओं तथा बीमा के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। व्यवहारों पर नियंत्रण: जाति अपने नियमों और अपने प्रतिबंध के माध्यम से अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है, उसके माध्यम से वह अपने सदस्यों को बताती है कि उन्हें समाज के किस व्यक्ति अथवा दूसरी जातियों के सदस्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। मनोरंजन की संस्था, जाति के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर अनेक उत्सव मनाते हैं, संस्कारों को संपन्न करने में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इस प्रकार जाति मनोरंजन की एक संस्था है। व्यक्ति के निजी जीवन, जाति के इन महत्व के कारण मजुमदार और मदन ने कहा है, जाति व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा का वह आधार है जहाँ व्यक्ति को रोजगार, आवास, संरक्षण और विवाह की सुरक्षा प्राप्त होती है जो व्यक्ति के परिवर्तनशील स्वभाव से संभव नहीं हो पाती। नंबर 2, जाति समुदाय संबंधी कार्य और महत्व। जाति व्यवस्था के अनेक सामुदायिक कार्य और महत्व है। नंबर 1, विशेष धार्मिक विधि विधान। ए आर देसाई के अनुसार यह जाति ही है जो जनता के धार्मिक जीवन में अपने सदस्य की स्थिति निश्चित करती है। प्रत्येक जाति की अपनी धार्मिक विधियां तथा अपने कुछ विशेष देवी देवता होते हैं, वह अपनी धार्मिक विधियों की ही रक्षा करती है। नंबर 2, रक्त की शुद्धता की रक्षा। यह व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच रक्तों का मिश्रण रोक कर उनके सदस्यों की रक्त की शुद्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। विवाह संबंधी निषेधों के माध्यम से वह यह कार्य करती है। नंबर 3, जातियों की अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा। हिंदू समाज में साम्राज्य संस्कृति के अतिरिक्त प्रत्येक जाति की भी अपनी संस्कृति होती है जिसकी जाति व्यवस्था रक्षा करती है। नंबर 4, संघर्ष प्ररोध। सामाजिक स्थिति के निर्धारण के माध्यम से यह व्यवस्था एक जाति तथा दूसरी जाति के बीच संघर्ष रोकती है। नंबर 5, व्यवसायिक संघ की स्थिति प्रदान करना। जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति को व्यवहारिक संघ की स्थिति प्रदान करती है। प्रत्येक का अपना परंपरागत व्यवसाय होता है जिसे उनके सदस्य करते हैं। नंबर 3, सामाजिक कार्य और महत्व। सामाजिक दृष्टि से इसके निम्नलिखित कार्य और महत्व है। नंबर 1, समाज का विकास और संरक्षण। विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष की समाप्ति तथा सहयोग द्वारा इसने हिंदू समाज के विकास और संरक्षण में महान योगदान किया है। पूरे समाज की एक दूसरे सूत्र में बांधने का महान कार्य किया है। इसके इस योगदान के कारण ही हरनीवाल का कहना है कि भारत एक ऐसे देश का असाधारण दृष्टान्त है जहाँ एक बहु समाज स्थिर रह सका है। हंटर का कहना है कि जाति प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कि उसे एक अद्वितीय संस्था बना देता है, यह कहा है कि भारतीय समाज को अखंड बना देती है और विभिन्न प्रतिद्वंदी समूहों को एक समुदाय में जोड़ती है। नंबर 2, हिंदू सामाजिक ढांचे और संस्कृति की रक्षा। जाति प्रथा में हिंदू सामाजिक ढांचे और संस्कृति की रक्षा कर ही उसका विकास और संरक्षण किया है। लंबी अवधि तक विदेशी शासन के बावजूद हिंदू संस्कृति और उसका सामाजिक ढांचा नष्ट नहीं हुआ है। उसके साथ ही अनेक संस्कृतियां और सामाजिक ढांचे विदेशी आक्रमण और शासन के कारण लुप्त हो गए, परंतु उन्हीं के साथ ही हिंदू संस्कृति और उनका सामाजिक ढांचा आज भी बना हुआ है। अब्बे दुबाय ने लिखा है कि यदि भारत ने सदा अपना सिर ऊंचा रखा, विभिन्न विज्ञानों, कलाओं तथा सभ्यता का संरक्षण और विकास किया तो इसका पूर्ण श्रेय उसकी उस जाति प्रथा का है जो जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 3, श्रम विभाजन की सरल व्यवस्था। जाति प्रथा ने हिंदू समाज में श्रम विभाजन की सरल व्यवस्था कर दी है। प्रत्येक जाति का अपना परम्परागत व्यवसाय होता है। नंबर 4, सुप्रजनन की शुद्धता। अनेक लोगों के अनुसार जाति प्रथा के कारण रक्त की शुद्धता बनी हुई है। सेजविक का कहना है कि जाति प्रथा के आधार पर अंतर विवाह प्रथा से सुप्रजनन की शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि इससे बाहर के समूह के वंशानुक्रमणीय दोष नहीं आ पाते। आज इस मत की आलोचना हो रही है, रक्त की शुद्धता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नंबर 5, समाजवादी ढांचा का आधार। सिद्धांत जाति प्रथा समाजवादी ढांचे का आधार तैयार करती है। यह व्यवसाय संबंधित रक्षा, सहयोग, शांति, सामाजिक एकता और संगठन का वातावरण तैयार करती है। रक्षा की भावना तथा सहयोग, शांति, सामाजिक एकता एवं संगठन का वातावरण समाजवाद का आधार है। व्यवहारतः यह समाजवादी ढांचे नहीं बल्कि शोषण का आधार तैयार करती है। नंबर 6 व्यवसाय के अनुसार शिक्षा। जाति प्रथा के अंतर्गत व्यक्ति को उसके व्यवसाय के अनुसार शिक्षा दी जाती है। ब्राह्मण को धर्म तथा वैश्य को व्यापार से संबंधित शिक्षा दी जाती है। सामाजिक संगठन और एकता। सामाजिक व्यवस्था को सुसंगठित करने और विभिन्न समुदायों को एकता के सूत्र में बांधने में जाति का योगदान अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्ण व्यवस्था जो कि जाति प्रथा का ही प्रारंभिक रूप है, सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए उद्देश्य ही चालू किया गया था। जाति व्यवस्था के दोष अथवा उससे होने वाली हानियों की विवेचना। रिजले और डॉक्टर राधा किशन ने जाति प्रथा की कटु आलोचना की है। रिजले महोदय ने इसे निम्न स्तर का संगठन तथा डॉक्टर राधा किशन ने इसे सामाजिक संगठन की उन्नति में बाधक बताया है। इसमें अनेक दोष है तथा इसके अनेक हानियां हैं, जिनके कारण इसका कटु आलोचना होती है। इसकी केवल आलोचना ही नहीं हो रही बल्कि अपने दोषों के कारण यह विकृत भी होती जा रही है। इस प्रथा के निम्नलिखित दोष अथवा इससे निम्नलिखित हानियां हैं। नंबर का आर्थिक दृष्टि। आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा से अनेक हानियां हैं। नंबर यह श्रमिकों की गतिशीलता में बाधा है, क्योंकि जातियों के लिए परंपरागत पेशे का निर्धारण कर यह व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर रोक लगा देती है। इसका परिणाम यह होता है कि एक व्यक्ति चाहे कितना ही योग्य क्यों ना हो, वह अपने परंपरागत व्यवसाय के अतिरिक्त कोई भी पेशा नहीं अपना सकता है। वह कोई अन्य पेशा करने के लिए बाहर नहीं जाता। इस प्रकार यह श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक है। नंबर 2 यह गतिशीलता में ही नहीं बल्कि श्रमिकों की कुशलता में भी बाधक है। खान पान संबंधी निषेध के कारण लोग मांस मछली और अंडा नहीं खाते हैं। दूध फल घी और शुद्ध खाद्य पदार्थों के अभाव के कारण उन्हें पौष्टिक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। स्वास्थ्य गिरने के कारण उनकी कुशलता में भी ह्रास हो रहा है। खान पान के मामले में अब स्थिति बदल गई है। इस संबंध में लगाए गए निषेधों की अवहेलना शुरू कर दी गई है। अंतर विवाह के कारण वंशानुक्रमण के अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 3 जाति व्यवस्था का ही दुष्परिणाम है कि आज जातिवाद की संकीर्ण भावना से उत्पन्न होने के कारण लोग केवल अपने जाति हित के बारे में सोच रहे हैं। राष्ट्रीय विकास और उन्नति की दृष्टि से कोई भी विचार नहीं करता। विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों एवं उद्योग में जाति के आधार पर नियुक्तियां की जाती है। आज नियुक्तियों में योग्यता की व्याख्या की जा रही है। अनेक योग्य व्यक्ति निराश होकर घूम रहे हैं। युवकों के मन में नैराश्य की भावना पैदा हो रही है। नंबर 4 आज से कुछ वर्षों पूर्व तक जाति प्रथा किसी के विकास में बाधक थी। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उच्ची जातियों के लोग किसी की उपेक्षा कर रहा था। जाति निषेधों के कारण लोग हड्डियों आदि से बनी खाद का प्रयोग नहीं करते। नंबर 5 राजनीतिक दृष्टिकोण। जाति प्रथा ने हिंदू समाज को अनेक टुकड़ों में बांट दिया है। राष्ट्र की अपेक्षा जाति के प्रति लोगों का अधिक झुकाव है। लोग राष्ट्रीय हित नहीं बल्कि जाति हित के बारे में अधिक सोचते हैं। इसका परिणाम यह है कि हिंदू समाज में प्राचीन काल से राजनीतिक एकता का अभाव है, जिसका लाभ उठाकर विदेशियों ने इस देश पर लंबे समय तक शासन किया है। हिंदू समाज के खंडों और उपखंडों में विभक्त होने तथा छुआछूत के कारण लोग संकीर्णता की भावना से जकड़े हैं। नंबर का सांस्कृतिक दृष्टिकोण। हिंदू समाज के अनेक खंडों और उपखंडों में बंटने कारण लोग पूरे समाज की सांस्कृतिक उन्नति के लिए एक होकर कार्य नहीं करते हैं। नंबर का सामाजिक दृष्टिकोण। जाति प्रथा के कारण अनेक सामाजिक हानियां भी हैं। इसने हिंदू समाज में ऊंची जातियों विशेष रूप से ब्राह्मणों की तानाशाही की स्थापना की है। ऊंची जातियों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त है, जिनका वे दुरुपयोग करते हैं। अपने सामाजिक स्थिति के आड़ में वे अनेक कुकर्म तथा छोटी जाति पर अत्याचार करते हैं। ऊंची जातियों के अत्याचार तथा अपने सामाजिक आर्थिक और धार्मिक निर्योग्यताओं के कारण छोटी जातियों विशेष रूप से अछूत वर्ग के लोगों ने धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया है। वे तेजी से ईसाई और बौद्ध हो रहे हैं। जाति संघर्ष और धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू समाज की एकता और उसके संगठन को भारी धक्का पहुंच रहा है। अस्पृश्यता हिंदू समाज का कलंक है और यह इस कलंक को जन्म दिया है इस प्रथा ने। इसके कारण ही दुष्प्रयोग की दशा में गिरावट आई है। ऊंची जाति के लोगों ने अपनी जाति सर्वोच्चता के लिए स्त्रियों को दासी बनाकर घर की चार दीवारी में बंद कर दिया था उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर रोक लगा दिया, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। हिंदू समाज की अनेक समस्याओं के पीछे इसी प्रथा का हाथ है। दहेज, बाल विवाह, बाल विधवा अथवा विधवा विवाह पर रोक जैसी समस्याएं अंतर विवाह के कारण उत्पन्न हुई। यह प्रगति के कार्य में बाधक है तथा रूढ़िवादिता को जन्म देती है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों पर जाति प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन दोषों के कारण ही लोग इसकी समाप्ति की मांग कर रहे हैं तथा यह विकृत हो रही है। जाति प्रथा की भूमिका। यद्यपि हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत जाति प्रथा का विघटन प्रारंभ हो गया है तथा अपने दोषों के कारण यह कटु आलोचना का विषय हो गया है, तथापि कुछ पश्चात विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की है। हंटन और बलंट आदि ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। कुछ भी हो, भारतवर्ष में धर्म के ठेकेदारों और घोर अनुदारवादियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केएम पड़िक्कर का कहना है कि यदि वर्णों का उपजातियों में विभाजन ना होता तो हिंदू समाज छिन्न भिन्न नहीं हो पाता और न ही उसका यह विनाशकारी रूप सामने आता। प्रोफेसर वाडिया ने तो इसकी कटु आलोचना करते हुए कहा है कि उपनिवेशों का उच्च कोटि का तत्व दर्शन और गीता का कर्म ज्ञान इस व्यवस्था के अत्याचारों के कारण कोरा वाकजाल बन गया है। अतीत में जाति व्यवस्था हमारे लिए कितनी ही उपयोगी संस्था क्यों ना रही हो, लेकिन वर्तमान जीवन में उसके परंपरागत कार्य हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को तेजी से विघटित कर रहे हैं। जाति केवल एक विश्वृंखलित सामाजिक संस्था है जो अपनी सेवाओं के पश्चात अब भारत के वातावरण को दुर्गंध से भर रही है। अतीत में सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता तथा श्रम विभाजन की दृष्टि से उपयोगी होने के बावजूद आज यह एक अनुपयोगी प्रथा हो गई है, क्योंकि इसने शोषण, अस्प्रियता, बाल विवाह, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, स्त्रियों की दैनिक स्थिति, आर्थिक कुशलता में ह्रास, रूढ़िवादिता, प्रौद्योगिक पिछड़ापन और संघर्षपूर्ण समूहों को जन्म दिया है तथा श्रमिकों की गतिशीलता और राष्ट्रीयता के विकास में बाधा और प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा किया है। इसने जातिवाद जैसी बुराई को जन्म दिया है जिसने हिंदू समाज के प्रत्येक क्षेत्र को दूषित कर रखा है। इसके कारण न केवल राष्ट्रीयता अपितु सामाजिक एकता और संगठन के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इसके इन्हीं दोषों के कारण इसे समाप्त करने पर जोरदार ढंग से बल दिया जा रहा है। अपने दोषों के कारण यह विघटित भी हो रही है, परंतु इससे उत्पन्न अनेक समस्याओं से हिंदू समाज अभी मुक्त नहीं हो पाया है। यद्यपि इसमें समाप्त करने के लिए व्यापक पैमाने पर मांग की जा रही है, तथापि आज भी कुछ थोड़े से ऐसे लोग हैं जो सैद्धांतिक दृष्टि से इसके लाभों की दुआही देकर इसके बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। वे भी स्वीकार करते हैं कि इस प्रथा में अनेक दोष हैं, परंतु उनका कहना है कि उन्हें दूर कर इसे उपयोगी संस्था बनाना चाहिए। प्रगतिशील समाज में विवाह, खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी निषेध तथा परंपरागत पेशे जैसे कोई बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। हमारा समाज जैसे जैसे प्रगति की तरफ बढ़ता जाएगा, इस प्रथा के ये लक्षण समाप्त होते जाएंगे। इसकी समाप्ति के बाद इसका अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जाति व्यवस्था धार्मिक और आदर्शवादी दोनों ही है। जाति व्यवस्था और धर्म का संबंध सांस्कृतिक दृष्टिकोण में जाति व्यवस्था का आधार धार्मिक है तथा सामाजिक दृष्टिकोण से यह कतिपय आदर्शों पर आधारित है। व्यवसाय, शिक्षा तथा विवाह संबंधी इसका पक्ष इसके आदर्शवादी आधार और धर्म निरपेक्ष रूप तथा पवित्रता और अपवित्रता की धारणा इसका धार्मिक आधार और धार्मिक रूप तैयार करती है। पहले पक्ष के कार्य धर्म निरपेक्ष और दूसरे के कार्य एक धार्मिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पवित्रता और अपवित्रता की धारणा के आधार पर यह निश्चय किया गया है कि कौन सा व्यवसाय और भोजन उच्च और निम्न, कौन सा निम्न श्रेणी का है। इस निर्धारण का आधार धार्मिक है। व्यवसाय और भोजन की श्रेष्ठता और निम्नता के आधार पर ही सामाजिक संस्करण अर्थात सामाजिक स्थिति की श्रेष्ठता और निम्नता का निर्धारण किया गया है। जो लोग उच्च श्रेणी का व्यवसाय और भोजन करते हैं वे ऊंची जातियों तथा जो लोग निम्न श्रेणी का व्यवसाय और भोजन करते हुए निम्न जातियों में रखे गए हैं। इसके आधार पर ही हिंदू सामाजिक संस्करण में ब्राह्मण को श्रेष्ठतम और हरिजनों को निम्नतम स्थिति प्रदान की गई है। हंटर का कहना है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति में टोटम, टैबू और माना संबंधी आदिम विचार धार्मिक संस्कार एवं यज्ञों जिन्होंने पवित्रता और अपवित्रता की भावना को जन्म दिया है तथा अवतार व कर्म के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मैक्स वेबर का कहना है कि जाति प्रथा का एक मुख्य आधार धार्मिक है और वह इस रूप में दैवी निर्देशों द्वारा व्यवस्थित है। दैवी निर्देश इस प्रकार है, प्रत्येक जाति को अपने लिए निर्धारित कर्म ही करना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने पर अगला जन्म निम्न जाति में होता है। अपना जाति कर्म करने पर ऊंची जातियों में जन्म होता है। धार्मिक के साथ साथ वह आदर्शवादी व्यवस्था है। कुछ आदर्श प्रतिमान भी इसके आधार है। सामाजिक श्रम विभाजन और संगठन के आदर्शवादी प्रतिमानों के कारण यह एक आदर्शवादी व्यवस्था है। विवाह संबंधी निषेध एक आदर्श की पूर्ति अर्थात रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए है। जाति एक आदर्श कृत्य और आदर्शवाद, जाति एक धार्मिक कृत्य और आदर्शवाद दोनों ही है। कुछ धार्मिक कृत्य जाति प्रथा के साथ साथ स्वयं जुड़ गए हैं। परंपरागत आधारों पर आस्था रखने वालों का यह विश्वास है कि जातियों की उत्पत्ति भगवान या ब्रह्मा की कृपा से हुई है। उनके मुंह, हाथ, जांघ और पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि जाति व्यवस्था में आगे आने वाली चार जातियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत तीन जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सम्मिलित किया जाता है और जिन्हें द्विज कहा जाता है। दूसरी श्रेणी में शूद्र आते हैं। द्विज के लिए जाति आधार पर कुछ धार्मिक कृत्य व संस्कार निर्धारित किए गए हैं और यह निर्देश दिया गया है कि वे तब तक शूद्र ही माने जाएंगे जब तक उन संस्कारों को पूरा ना करेंगे। द्विज का संपूर्ण जीवन इन्हीं संस्कारों से घिरा हुआ होता है और इनको पूरा किए बिना जीवन पूर्ण नहीं माना जाता है। मनुष्य मृत्यु में निम्नलिखित 13 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 गर्भाधान संस्कार, जिसके द्वारा गर्भ की शुद्धि की जाती है। द्विजों के लिए पुत्रोत्पत्ति के लिए गर्भधान संस्कार अनिवार्य था। नंबर 2 पुंसवन संस्कार, प्राय गर्भधारण करने के चतुर्थ मास में संपन्न होता है। इस संस्कार का उद्देश्य वीर पुत्र की कामना है। नंबर 3 सीमंतोन्नयन संस्कार, के द्वारा गर्भवती स्त्री को दुष्ट शक्तियों की से रक्षा करने का प्रयत्न किया जाता है। नंबर 4 जातुकर्म, यह संस्कार नाभि छेदन के पूर्व किया जाता है। इसमें सोने की सलाका से शहद एवं घी के बच्चे को चटाया जाता है। नंबर 5 नामधेय अर्थात नामकरण संस्कार, वह संस्कार है जबकि 10वें या 22वें दिन शुभ दिन देकर बच्चे का नामकरण किया जाता है। नंबर 6 निष्क्रमण संस्कार, के द्वारा सबसे पहले बालक को घर से बाहर निकाला जाता है। यह संस्कार उस समय किया जाता है जबकि बच्चा 4 महीने का हो जाता है। नंबर 7 अन्नप्राशन संस्कार, 6 माह की आयु में बच्चे को पहली बार अन्न ग्रहण कराने के लिए किया जाता है। नंबर 8 चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार, में बच्चे के सिर के बाल धार्मिक अनुष्ठानों पूजा पाठ के बीच पहली बार मुड़े जाते हैं। नंबर 9 कर्ण भेद संस्कार, के द्वारा बच्चे का कान छेदा जाता है। नंबर 10 विद्या आरंभ संस्कार, 5वें-7वें वर्ष में बच्चे के पढ़ाई लिखाई शुरू करने के उपलक्ष्य में किया जाता है। नंबर 11 उपनयन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है क्योंकि इन्हीं संस्कारों के द्वारा द्विजों का दोबारा जन्म होता है और वह द्विज कहलाने के योग्य बनता है। ब्राह्मण का उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 11 वर्ष की आयु में और वैश्य का 12 वर्ष की आयु में होता है। नंबर 12 विवाह संस्कार, के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है। जाति प्रथा में विवाह को एक धार्मिक कृत्य या संस्कार माना गया। 13 नंबर 13 अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार, मृत्यु होने के पश्चात पुत्र या अन्य किसी संबंधी के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जाति के लिए जाति प्रथा कुछ आदर्शों को धर्म या कर्तव्य कार्यो के रूप में प्रस्तुत करती है। यह कहा जाता है कि किसी भी जाति में जन्म लेना पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, इसलिए जो भी जिस जाति में उत्पन्न हुआ है उसे उसी अवस्था में संतुष्ट रहना चाहिए और जाति द्वारा निर्धारित कर्तव्य कर्मों को निष्ठा पूर्वक करते रहना चाहिए। इन कर्तव्य कर्मों को करना ही जीवन के आदर्शों की प्राप्ति करना है। यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति भी इसी कर्म मार्ग से ही संभव है। उसी प्रकार विवाह के संबंध में, देशों के चुनाव के संबंध में, खाने पीने के संबंध में कुछ आदर्श स्थितियों का जाति प्रथा प्रत्येक जाति के सदस्यों के समूह उपस्थित करती है और यह आग्रह करती है कि इन आदर्शों की प्राप्ति के प्रत्येक को सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जाति प्रथा में पवित्र और अपवित्र की भावना भी देखने को मिलती है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि जाति एक धार्मिक कृत्य है। ब्राह्मण की स्थिति पवित्रता की धारणा की ही है एक अभिव्यक्ति है, जबकि हरिजनों की स्थिति के साथ अपवित्रता की धारणा जुड़ी हुई है। उसी प्रकार कुछ पेशे जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, अध्ययन, कार्य आदि पवित्र माने जाते हैं, जबकि मूल मूत्र साफ करना, गंदे कपड़े धोना, जूता बनाना आदि अपवित्र पेशे माने जाते हैं। खाने पीने के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। मांस, मछली, शराब अपवित्र है, जबकि फलाहार आदि पवित्र है। ये सभी बातें जाति के अंतर्गत आती हैं और इसी रूप में भी जाति को एक धार्मिक कृत्य और आदर्शवाद दोनों ही कहा जा सकता है। प्रकार्यात्मक पक्षों के संदर्भ में जाति की गतिशीलता। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था की प्रगति परिवर्तनशील है। इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहा है तथा आज भी परिवर्तन का क्रम जारी है। अब तो यह संभावना व्यक्त की जाने लगी है कि भविष्य में भारत एक जाति विहीन समाज हो जाएगा। परिवर्तनशीलता की इस प्रगति के कारण ही यह भी कहा जाने लगा है कि जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था का रूप ग्रहण कर रही है। ऐतिहासिक दृष्टि से जाति व्यवस्था के काल को डॉक्टर घुरिया ने चार वर्गों में बांटा है। वैदिक काल ईसा से 600 वर्ष तक, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल 30वीं शताब्दी तक, नंबर 3 धर्म शास्त्र काल 10वीं अथवा 11वीं शताब्दी के अंत तक, नंबर 4 आधुनिक काल 19वीं शताब्दी तक, नंबर 1 वैदिक काल वैदिक पीरियड। वेदों, उपनिषदों तथा कुछ मौलिक ब्राह्मण ग्रंथों में इस काल के बारे में जानकारों इनका इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस युग में जाति व्यवस्था नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था थी। समाज चार वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु इन वर्णों के बीच खान पान और विवाह संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं था। श्याम शास्त्री का कहना है कि बौद्ध युग से पूर्व हिंदुओं में खान पान और विवाह के संबंध में कोई ऐसे नियम नहीं थे जिनसे अंतर जाति विवाह और भोजन का निषेध होता। वर्णों के बीच ऊंच नीच का संस्तरण तथा ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनके बीच ऊंच और नीच की कटु भावना थी। प्रत्येक वर्ण का धर्म कर्तव्य निर्धारित था, परंतु यह बंद व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था के लक्षणों का अभाव था। नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। इस युग में स्थिति में कुछ परिवर्तन शुरू हुआ। वर्णों के बीच पृथकता, ब्राह्मण को विशेषाधिकार दिलाने तथा शूद्रों के लिए नियोग्यताएं निर्धारित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिलाने के लिए सर्वाधिक प्रयास किया। क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों ने इस प्रकार के परिवर्तन को अभी तक स्वीकार नहीं किया था। ब्राह्मणों की विशेषाधिकारों और एकाधिकारों को चुनौती दी जाने लगी। समाज में संघर्ष की स्थिति थी। बौद्ध और जैन धर्मों की उत्पत्ति इसी के परिणाम स्वरूप हुई। इस युग में पवित्रता और कर्म कांडों को महत्व प्रदान करने के कारण शूद्रों के लिए नियोग्यताएं निर्धारित की गई। मनुष्य मुक्ति में उन्हें शासन और न्याय से वंचित कर दिया गया। उनके अपराधों के लिए कठोर से कठोर दंडों की व्यवस्था की गई। अनुलोम विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ण संकर समूहों को निम्न दृष्टि से देखा जाने लगा। संभवतः इसी के परिणाम स्वरूप उपवर्णों की स्थापना हुई, जिन्होंने आगे चलकर जातियों का रूप ग्रहण कर लिया। जैन और बौद्ध धर्म के पतन के बाद ब्राह्मणों ने पुनः शक्ति अर्जित करने का प्रयास किया और वे सफल रहे। इसके लिए उन्होंने वर्ण संबंधी नियम कठोर बनाए तथा चार वर्णों के बीच ऊंच नीच का सामाजिक संस्तरण कठोर कर दिया। प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कठोर नियम हो गए, जिन्हें तोड़ने वाला उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था। इस युग में ही छुआछूत और जाति पृथकता की भावना शुरू हुई। जन्म के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण भी प्रारंभ हुआ। अंतर विवाह प्रथा के प्रारंभ का भी यही युग है। इस काल में वर्ण व्यवस्था का रूप विकृत हो गया था तथा आज की जाति व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। नंबर 3 धर्मशास्त्र युग। यह युग तीसरी शताब्दी के अंतिम वर्षों से प्रारंभ होता है। इसमें ब्राह्मणों के प्रभाव और अधिक वृद्धि हुई है। यही युग है जिसमें रूढ़िवादी हिंदू धर्म का स्वरूप निर्धारित हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से यह गुप्त काल है। डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद ने अपनी पुस्तक जाति व्यवस्था में लिखा है कि गुप्त काल में पुरोहित मंत्रियों ने क्षत्रियों तथा अन्य जातियों को बुरी तरह कुचल डाला और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवहारिक रूप में वेदों की तिलांजलि देकर मनुस्मृतियों के नियमों को व्यवहार का आदर्श मान लिया। धर्मशास्त्र युग में जिसे स्मृति काल भी कहा जा सकता है, याज्ञवल्क्य संहिता, विष्णु संहिता, पराशर संहिता और नारद स्मृति के आधार पर विभिन्न जातियों के धर्म निर्धारित किए गए। डॉक्टर घुरिये का मत है कि इस युग में 2 सिद्धांतों को लागू कर जाति व्यवस्था विकसित की गई। ब्राह्मणों को दान की पवित्रता और महत्ता स्पष्ट कर उसकी स्थिति सुदृढ़ की गई और दूसरी ओर पुनर्जन्म व कर्म कांड के सिद्धांत का व्यापक प्रचार किया गया जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने जाति के दायरे में बाहर ना निकल सके। वैश्यों का बढ़ता हुआ प्रभाव रोकने के लिए उनसे शूद्रों का सा व्यवहार किया जाने लगा। ब्राह्मणों का प्रभुत्व इतना बढ़ा कि राजा भी उनका सम्मान करने लगा। शूद्रों की स्थिति और गिरी। उन्हें निकृष्ट समझा जाने लगा। उन्हें छूना तथा उनके हाथ का बना भोजन करना पाप था। मध्यकालीन युग। नंबर 4 मध्यकालीन युग। इस युग का प्रारंभ 11वीं शताब्दी के अंत में हुआ। इस युग में 2 विशेष बातें हुई। वैश्यों का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया तथा चारों तरफ राजपूतों का शासन स्थापित हो गया। अपना शासन अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था पूरी तरह स्वीकार कर ली। इस युग में धार्मिक विश्वासों और कर्मकांडों का महत्व इतना बढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति गतिहीन और धर्म भीरु बन गया। अंतर विवाह कुलीनता और कर्मकांडी पवित्रता पर बल देने के कारण जातीय व्यवस्था सामाजिक जीवन की एकमात्र आधारशिला हो गई। बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, पर्दा तथा सती प्रथा जैसी बुराइयां इसी युग में प्रारंभ हुई। इन्हें धर्म का अंग बना दिया गया। जाति पवित्रता और अस्पृश्यता की भावना अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई। कबीर, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु ने जातिगत ऊंच नीच की भावना, पाखंडों और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सामाजिक और धार्मिक आंदोलन छेड़ा, परंतु इनका अंत नहीं हुआ। जातिगत कट्टरता का रूप अधिक चित्रित हुआ। यह मुस्लिम शासन काल था। मुसलमानों के प्रति कट्टरता की भावना के कारण भी यह सुदृढ़ हुई। नंबर 5 ब्रिटिशियस युग। अंग्रेजों के भारत में आने के साथ यह युग प्रारंभ होता है तथा स्वतंत्रता तक चलता है। प्रारंभ में अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया, परंतु वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले इस विषय में हस्तक्षेप किया। ब्रिटिश सरकार ने 1850 में जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम तथा 1872 विशेष विवाह अधिनियम बनाया। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव तथा ब्राह्मण व्यवस्था से उत्पन्न क्षोभ के कारण हिंदू समाज के अंधविश्वासों, पाखंडों और कुरीतियों के विरुद्ध समाज सुधार की क्रांति शुरू हुई। इसने जाति व्यवस्था पर करारी चोट की। इसमें ब्राह्मण समाज, आर्य समाज तथा रामकृष्ण मिशन का योगदान है। 10 इसमें ब्रह्मा समाज, आर्य समाज तथा रामकृष्ण मिशन का योगदान है। 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जाति व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध संगठित आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, रानाडे और महात्मा गांधी का महान योगदान है। नंबर 6 आधुनिक युग। आधुनिक युग यह युग स्वतंत्रता के बाद से प्रारंभ होता है। भारतीय संविधान में जाति पर आधारित भेदभाव और छुआछूत समाप्त कर दिया गया है। विवाह संबंधी अनेक प्रतिबंधों को दूर करने के लिए 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम तथा छुआछूत दूर करने के लिए अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया गया। पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी उन्नति, औद्योगिकीकरण, देशों की बहुलता, धन के महत्व, यातायात और संचार साधनों में वृद्धि, नगरीकरण, नमून समूहों के निर्माण तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं महिला आंदोलन आंदोलनों तथा सरकारी प्रयास के कारण आज जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, वह विघटित हो रही है। ब्राह्मणों के प्रभुत्व में ह्रास, जातिगत संस्करण में परिवर्तन, अस्पृश्य और दलित वर्ग का उत्थान, वैवाहिक मान्यताओं में परिवर्तन, व्यवसायिक आधार पर परिवर्तन, खान पान के प्रतिबंध में परिवर्तन, जन्म के महत्व में ह्रास तथा जाति व्यवस्था की प्रामाणिकता में अविश्वास इस परिवर्तन और विघटन के द्योतक है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भूमिका। एक जटिल अनोखी और आश्चर्यजनक संस्था के रूप में जाति हिंदू सामाजिक जीवन के एक स्वाभाविक पक्ष के रूप में है, परंतु पाश्चात्य विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति के संबंध में इतना विवाद उठाया है कि उस पर विचार करना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ब्लंट का कहना है कि इनमें से कुछ तो बिल्कुल हास्यास्पद हैं, लेकिन जिन सिद्धांतों को काफी चतुरता और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया गया वे भी इस व्यवस्था की उत्पत्ति का वास्तविक आधार स्पष्ट नहीं करते। इसका इतिहास इतना पुराना है कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांतों के प्रतिपादन के बावजूद किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। डीएन मजुमदार का कथन है कि भारतीय जाति प्रथा एक अत्यधिक जटिल संस्था है और प्रायः एक शताब्दी के परिश्रम और सावधानी पूर्वक अनुसंधान के पश्चात भी हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि यह अनोखी सामाजिक संस्था अपने निर्माण और विकास में किन किन व्यवस्थाओं की देन रहती है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर एक, टोटमवादी सिद्धांत। गोल्डन वाइजर का मत है कि टोटम से संबंधित मान्यता या अंधविश्वास व्यक्ति तथा समूह के मध्य सूत्र का कार्य करते हैं। इस दृष्टि से जाति का प्रारंभिक रूप टोटम से संबंधित माना जा सकता है। पूर्व में ये टोटम पेड़ पौधे पशु या पक्षी होते थे, किंतु कालांतर में मस्तिष्क और प्रज्ञा के निरंतर विकास के कारण व्यक्ति ने अपना टोटम मनुष्य ही मान लिया और कल्पना के आधार पर पूर्वज की मान्यता स्वीकार की गई। यही आगे चलकर गोत्र या प्रवर के नाम से प्रचलित हुए, जहाँ से व्यक्ति आया तथा जो उसकी रक्षा करने के को सदैव तत्पर रहता है वही टोटम है। अतः जहाँ से व्यक्ति ने जन्म लिया तथा जो संस्था सुरक्षा प्रदान करती है वही जाति कहलाती है। टोटम की धारणा में पूर्वज की पूजा आवश्यक होती है तथा जाति व्यवस्था में भी पूर्वज पूज्य होते हैं। अपनी उत्पत्ति की धारणा के संबंध में ब्राह्मण क्योंकि ब्रह्मा तथा सरस्वती के वरद पुत्र माने जाते हैं, अतः व्यवहारिक दृष्टि से भी वे विद्या कोष्ठक में सरस्वती के उपासक बने। विष्णु तथा लक्ष्मी की संतानें वैश्य होती है, अतः वैश्य समाज धर्म लक्ष्मी का पुजारी बना। शिव तथा पार्वती की संतानें संतत क्षत्रिय कहलाई, अतः वह शक्ति पार्वती का दूसरा नाम की उपासक बनी। इसी प्रकार नारद क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के मध्य संपर्क सूत्र तथा सेवा कार्य करते थे, अतः शूद्रों ने उन्हें अपना जनक मानकर उनकी पूजा माना। कालांतर में टोटम की यह धारा पूर्वज में परिवर्तित हो गई। आलोचना, इस सिद्धांत का यह दोष यह है कि इस नाम का सिद्धांत किसी भी समाज शास्त्री ने प्रमुखतः प्रतिपादित नहीं किया है, मान्यताएं तथा धारणाएं अनेकों ने प्रस्तुत की है। एक अन्य कठिनाई यह भी है कि टोटम की धारणा आज तक भारतीय तथा विदेशी वन्य समाजों में भी पाई जाती है, किंतु उनमें इस प्रकार की जाति व्यवस्था कभी उत्पन्न नहीं हुई है। नंबर 2, परंपरात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार वे ग्रंथ है जो हिंदू समाज में पारस्परिक रूप में धार्मिक सांस्कृतिक आधार पर स्वीकृत तथा मान्य है। नंबर का ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, अतः उनका कार्य तथा व्यवसाय मुख से संबंधित अध्ययन वाचन तथा प्रचार हुआ। ब्रह्मा की बाहु से पौधा और पैदा होने वाले क्षत्रिय बाहु शक्ति से संबंधित अस्त्र शस्त्र तथा रक्षा का कार्य करने लगे। पूर्व प्रदेश से जन्म लेने वाले वैश्य उदर पूर्ति से संबंधित उत्पादन वितरण के व्यवसाय में संलग्न हुए तथा शूद्र जिनका जन्म पैरों से हुआ समाज का आधार बने तथा अन्य जातियों की सेवा करने लगे। मनु का कथन है कि मूल चार वर्णों के लोग जब विवाह के नियमों को तोड़कर प्रतिलोम या अत्यंत अनुलोम ब्राह्मण पुरुष का शूद्र स्त्री से विवाह करने लगे तो उनकी संतति वर्ण संकरण हुई। किसी भी वर्ण की मान्यता उन्हें न मिल पाने के कारण जातिया उत्पन्न हुई जो लगभग 57 हुई। नंबर महाभारत में भृगु मुनि का कथन है कि पहले केवल एक ही जाति थी ब्राह्मण, उनमें से विषय भोग क्रोधी तथा साहसी प्रवृत्ति के हो गए, वे क्षत्रिय बन गए। जिन्होंने पशुओं का पालन पोषण तथा कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया वे ही वैश्य हो गए। अनाचार अशौच हिंसा तथा असत्य से संबंधित होने वाला समूह शूद्र में परिवर्तित हो गया। नंबर भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि गुण तथा कर्म के अनुसार ही चारों जातियां उत्पन्न हुई है। आलोचना, इस सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित कारणों से की जाती है। नंबर एक, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त आज के संदर्भ में विश्वसनीय ही नहीं है, क्योंकि किसी पुरुष या देवता के विभिन्न अंगों से मनुष्य की उत्पत्ति की कल्पना हास्यास्पद है। नंबर दो, मनु के वर्ण संकरों की संतति को जाति का नाम दिया है, यदि ऐसा होता तो वर्ण के नाम पृथक होते तथा जाति के पृथक, अतः यह मान्यता निराधार सिद्ध होती है। यदि पूर्व काल में सभी ब्राह्मण थे तथा बाद में उसी के अंशों ने क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र का रूप लिया होता तो इतने ऊंच नीच तथा व्यवहारिक निषेधों का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था। महाभारत कालीन समाज में यह विरोधाभास अस्पष्टता दिखाई पड़ता है। कर्ण को वह सम्मान न मिल सका जो पांडवों को प्राप्त था। इसके विपरीत भीष्म और तथा द्रोणाचार्य ब्राह्मणों से भी अधिक सम्मान प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने यदि गुण तथा कर्म को जाति की उत्पत्ति का कारण माना है तो जन्मजात स्थिति की मान्यता जाति व्यवस्था के साथ किस प्रकार जुड़ी है, इस प्रश्न का उत्तर देना असंभव होगा। इस सिद्धांत का एक अन्य दोष यह भी है कि ये सभी मान्यताएं वर्ण से संबंधित हैं, जाति से नहीं। इस सिद्धांतों को स्वीकार करने पर वर्ण तथा जाति को पर्याप्त मानना होगा, जबकि ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वर्ण तथा जाति दोनों दो ध्रुव हैं। नंबर तीन, राजनैतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक अपेर डुबाय हैं तथा इनका समर्थन डॉक्टर घुरिये बसंत आदि विद्वानों ने किया है। इस सिद्धांत के समर्थकों की मानता है कि ब्राह्मणों की चतुराई के कारण जाति प्रथा उत्पन्न हुई। वर्ण व्यवस्था में कोई सीमा रेखा या प्रतिबद्ध नहीं था, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यवसाय छोड़कर अन्य पेशा अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ब्राह्मण समाज ने हिंदू समाज में धर्म के प्रति आघात आस्था देखकर यह अनुभव किया कि धर्म के साथ उनके जुड़े होने के कारण राजा महाराजा तक उनका सम्मान करते हैं। उनके मन में लोभ जागृत हुआ तथा अपनी स्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने अपने आप को प्रथम तथा जिनके संरक्षण में वे रहते थे उन्हें क्षत्रियों द्वितीय स्थान पर रखा। वैश्यों के बिना जीवन की पूर्णता असंभव थी, अतः उन्हें द्वितीय माना एवं शूद्र कार्य करने वालों को शूद्र मानकर निम्नतम स्थान दिया। इस प्रकार संस्करण के कारण जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई। दूसरी ओर अपनी शक्ति का अनुभव करके अपनी स्थिति को अविचलित बनाए रखने तथा आने वाले पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए पैसे के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया। पुरोहित तथा पंडित का बेटा ही पुरोहिती कर सकेगा ऐसा मानकर अन्य वर्ग के लोग पर भी व्यवसायिक प्रतिबंध लगा। वंशानुगत व्यवसाय की मान्यता निर्धारित की। धार्मिक अवस्थाओं के कारण ब्राह्मणों की चतुराई से अवगत होते हुए भी हिंदू समाज इस व्यवस्था का विरोध नहीं कर सका। फलस्वरूप जन्मजात स्थिति तथा अनुवांशिक व्यवसाय की धारणा ने जन्म लिया जो जाति व्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं हैं। डॉक्टर घुरिये ने माना है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है। जाति रूपी इस शिशु का पालन पोषण गंगा यमुना की घाटी के पालने में हुआ है तथा इसका प्रसार भारत के दूसरे भागों में उन ब्राह्मणों ने किया है जिन्हें इससे लाभ होने की संभावना थी। जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को जितनी विशेषाधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त हैं, उनमें से यह भी प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर पैदा किया है। आलोचना, इस सिद्धांत के आलोचकों का मत है कि जाति यदि ब्राह्मणों की चतुराई भरी योजना का प्रतिफल है तो उसे एक कृत्रिम कोष्ठक में बनावटी संगठन होना चाहिए था, किंतु भारतीय समाज के गहन अध्ययन से ऐसा प्रमाणित नहीं होता है। जाति व्यवस्था अत्यंत प्राचीन काल से ही यहाँ विद्यमान है तथा बड़े स्वाभाविक रूप से उसका स्वरूप निरंतर समाज की संरचना के अनुरूप परिवर्तित, परमार्जित या विकसित होता रहा है। कोई भी कृत्रिम या लादी हुई संरचना अधिक दिनों तक बहुत लोगों को अंधकार में नहीं रह सकती। ब्राह्मणत्व द्वारा पूरे भारतीय समाज में हजारों वर्षों से चमड़े का अपना सिक्का चलाने की बात विश्वसनीय नहीं लगती। इतना अवश्य हो सकता है कि जाति की निरंतरता, उसमें नीच उच्च की भावना तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठत्व प्रदान करने की मान्यता को ब्राह्मणों ने ही गति प्रदान की हो। नंबर चार, धार्मिक सिद्धांत। एम होकार्डलेस कास्टेस ने जाति की उत्पत्ति का एकमात्र कारण धार्मिक संस्कारों को माना है। ये संस्कार प्राचीन उत्पादन संस्कार से संबंधित होते हैं। राजा अपने धार्मिक संस्कारों की पूर्ति के लिए, क्योंकि समय अभाव के कारण स्वयं प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता था, अतः उसने प्रजा के विशिष्ट समूहों को विशेष कार्य सौंपे। फूल का दायित्व माली को, पानी की जिम्मेदारी कहार को, सफाई की धोबी को, शुचिता तथा स्वच्छ शरीर का दायित्व नाई को, धार्मिक क्रियाओं का संपादन पंडित को, बलि की जिम्मेदारी कसाई को। इन्हीं आधार पर प्रजा के कार्यों का भी विभाजन हुआ। होकार्ड का मत है कि जाति की उत्पत्ति का एकमात्र कारण धार्मिक संस्कार ही है। यदि यह बात सत्य न होती तो प्रत्येक जाति के व्यवसाय को धार्मिक आधार पर पवित्र या अपवित्र मानकर उसे ऊंचा या नीचा दर्जा नहीं दिया जाता। सेनार्ड के अनुसार पारिवारिक पूजा तथा कुल देवताओं के भिन्न के कारण भोजन संबंधी जो निषेध प्रारंभ हुए, उन्हीं के फलस्वरूप जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। एक देवता पर आस्था रखने वाला समूह अपने आप को अलौकिक बंधन से जुड़ा हुआ मानकर एक विशेष प्रकार का भोग अपने देवता पर चढ़ाता था, जो निश्चित रूप से अन्य देवताओं के भोग से पृथक होता था। भोग लगाई हुई वस्तु समूह के लोग बांटकर खाते थे, अतः धीरे धीरे समूहों का खान पान अपने इष्ट के भोग से संबंधित हो गया तथा भोजन सामग्री में वही वस्तु स्वीकार की गयी जो इष्ट की अनुकूल थी। प्रतिकूल भोज का निषेध लागू हुआ। समान पूजा पद्धतियों तथा धार्मिक विश्वासों के कारण धीरे धीरे विवाह की सीमाएं भी अंतर विवाही नियमों का पालन करने लगी। भारतीय समाज जाति प्रथा में ये दोनों ही तत्व मौजूद हैं। इसमें भोजन संबंधी निषेध भी पाया जाता है तथा पवित्र एवं शुद्धता की धारणा का प्रतीक अंतर विवाही नियमों का पालन करने लगी। भारतीय जाति प्रथा में ये दोनों ही तत्व मौजूद हैं। इसमें भोजन संबंधी निषेध भी पाया जाता है तथा पवित्रता एवं शुद्धता की धारणा का प्रतीक अंतर्विवाही नियम भी जाति से बाहर विवाह करने पर पाप तथा सिद्धांतों के वर्ण संकर होने का भय बना रहता है। वे सभी मान्यताएं प्राचीन हिंदू आर्य परिवारों में पाई जाती थी। अतः यह धारणा पर्वती होती है कि जाति प्रथा आर्य परिवारों से संबंधित नहीं, धार्मिक विचारों तथा उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का प्रतिफल है। आलोचना। हट्टन की मान्यता है कि होकार्ड महोदय ने जाति को पूर्णतः धार्मिक संस्था बनाकर रख दिया है। धर्म तत्वों की उपस्थिति जाति व्यवस्था में अवश्य है, किंतु वह पूर्णतः सामाजिक संस्था है। यह भी आश्चर्यजनक ही प्रतीत होता है कि किसी भी सामाजिक संस्था का जन्म केवल बलि प्रथाओं के कारण हुआ हो। यदि होकार्ड महोदय का यह कथन सत्य मान भी लिया जाए तो जाति प्रथा में खान पान के लिए निषेध तथा विवाह के कठोर नियमों का समावेश क्यों हुआ, यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है। इसी प्रकार सेनार्ड महोदय का मत भी आलोचनाओं के घेरे से बाहर नहीं निकल पाता। जाति प्रथा से जुड़े हुए प्रजातीय एवं व्यवसायिक कारणों को पूर्णतः अस्वीकार करके कुछ केवल कुल देवताओं की पूजा पद्धतियों तक सीमित दायरों में जाति उत्पत्ति की कारण ढूंढना नितांत अवैज्ञानिक प्रतीत होता है। इसी प्रकार यह भी मानना कि समस्त जाति के सदस्य एक वंश के होते होंगे गलत है, क्योंकि हिंदू जाति व्यवस्था की संरचना में सदैव प्रत्येक जाति कई वंशों के समूह से बनी है। नंबर पाँच, प्रजाति सिद्धांत। प्रजाति तत्वों को जाति की उत्पत्ति का निर्णायक कारण मानने वाले समाज शास्त्रियों में प्रमुख रिजले घुरिया डॉक्टर मजूमदार हैं। डॉक्टर घुरिए के अनुसार जाति प्रथा के कुछ पक्षों का जन्म गंगा के मैदान में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों से संबंधित इंडो आर्यन सभ्यता का विकास हुआ था। आर्य लोग जब भारतवर्ष में आए तो यहाँ 3 वर्ष अस्पष्ट थे, जिनमें परस्पर विवाह होता था, किंतु ऐसा न करने पर प्रतिबंध भी नहीं था। आर्यों ने इन तीनों वर्गों की स्त्रियों से विवाह किए तथा इनसे उत्पन्न संतानों को सम्मानजनक स्थान दिया, किंतु आदिवासी स्त्रियों से उत्पन्न संतान को शूद्र मानकर उन्हें शूद्र घोषित किया गया तथा धार्मिक संस्कारों से निषिद्ध किया गया। शारीरिक एवं रक्त संबंधी शुद्धता की धारणा के कारण इन आर्य ब्राह्मणों ने विवाह तथा खान पान के निषेध लागू किए। हर्बर्ट रिजले ने लिखा है, जहाँ कहीं विश्व के इतिहास में कुछ लोगों ने आकस्मिक आक्रमण द्वारा अथवा धीरे धीरे किसी भूभाग पर अधिकार करके उसे निवासियों के अधीन किया है, वहाँ विजेताओं ने अपनी पत्नियाँ साथ न लाने के कारण उस देश की स्त्रियों को दासियों या पत्नियों के रूप में ग्रहण किया है। किंतु जब अपनी लड़कियों के विवाह करने की बात आई तो उन्हें अपने ही समाज में विवाह करने की अनुमति दी। यह इस व्यवस्था की पुष्टि करता है कि अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों के नियम इसी कारण आर्य में प्रचलित हुए। वे आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए थे, अतः स्त्रियों की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने यहाँ की स्त्रियों से विवाह किया। इन विवाहों के फलस्वरूप जो संतान पैदा हुई उसमें वर्ण संकरता के विभिन्न प्रजाति तत्व मौजूद थे, अतः प्रजाति विभिन्न के कारण पृथक जातियों का जन्म हुआ। डॉक्टर मजुमदार के अनुसार प्रारंभिक हिंदू समाज में तीनों उच्च वर्ण रंग के आधार पर आपसी भेदभाव का व्यवहार करते थे। कालांतर में जब प्रजाति मिश्रण के कारण जातियां बनी तो रंग भेद भले ही समाप्त हो गया हो, किंतु भेदभाव ज्यों के त्यों बने रहे। इंडो आर्यन तथा प्राग द्रविड़ प्रजातियां आक्रमणकारी तथा दास प्रजातियों की स्त्रियों के विवाह के फलस्वरूप पैदा हुई थी। प्रजातीय शुद्धता को बचाए रखने के लिए रक्त के मिश्रण को ठीक नहीं माना गया, अतः अंतर विवाही नियम कठोर हुए। प्रारंभ में इन प्रजातियों में आदिवासी जीवन पद्धति के प्रभाव के कारण मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के प्रति लगाव था, अतः स्त्रियों को निम्न स्थिति के पुरुषों से विवाह करने की स्वीकृति नहीं थी। प्रतिलोम विवाह का निषेध इस तथ्य की पुष्टि करता है। अपनी संस्कृति की शुद्धता तथा रक्षा के लिए प्रत्येक नवीन प्रजाति मिश्रण से उत्पन्न जाति ने अपनी पृथक पहचान बनाए रखने के लिए पृथक व्यवसाय तथा खान पान के नियम बनाए। वेशभूषा तथा व्यवहार में भी विशिष्ट तत्वों का समावेश हुआ, जिससे बाह्य स्तर पर भी विशेषता स्तर पर भी विभिन्नता स्पष्टतः प्रदर्शित हो सकी। डॉक्टर मजुमदार के अनुसार जाति की स्थिति का निर्धारण रक्त की शुद्धता पर आधारित था। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी प्रजाति तत्वों को जाति प्रथा का जनक माना है। उनके मतानुसार जब विभिन्न प्रजातियां परस्पर संपर्क में आती हैं तो प्रजाति संघर्षों में शक्तिशाली प्रजाति द्वारा निर्बल प्रजाति को सात्मीकरण करने के लिए विवश किया जाता है, किंतु हिंदुओं ने प्रजातीय संघर्षों के समाधान के लिए प्रजातंत्री पद्धतियों का अनुसरण किया, प्रत्येक प्रजाति वर्ग को विकसित होने का अवसर प्रदान किया, फलस्वरूप जाति व्यवस्था ने जन्म लिया। आलोचना का हट्टन ने प्रजाति सिद्धांत की कटु आलोचना की है। उनका तर्क है कि प्रजातीय सिद्धांत जाति व्यवस्था के खान पान संबंधी निषेधों के विषय में मौन है। प्रजाति आधार पर अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में भी निग्रो लोगों के लिए पृथक जलपान गृह रेल तथा स्कूलों की व्यवस्था है, किंतु उनके यहाँ छुआछूत आदि की कोई धारा नहीं पाई जाती, जबकि हिंदू जाति व्यवस्था में छुआछूत एक प्रमुख विशेषता है। यदि प्रजाति भिन्नताएं ही जाति व्यवस्था की जनक होती तो बाहर से आए मुसलमानों तथा ईसाइयों से भी इस व्यवस्था का अस्तित्व होना चाहिए था। नंबर खा प्रजाति संघर्षों के बाद अनुलोम विवाह के जन्म ने लोगों ने जाति प्रथा को जन्म दिया, ऐसा सोचना हास्यास्पद है, क्योंकि जाति के नियमों में अनुलोम विवाह आवश्यक रहा हो यह स्वीकार किया जा सकता है, किंतु विवाह के किसी नियम के कारण एक पूरी सामाजिक संस्था का जन्म हुआ हो यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है। भारतीय संस्कृति का सिद्धांत या माना का सिद्धांत। जेएस हैंटन का मत है कि जाति प्रथा विशिष्ट आधार पर केवल भारत में पाई जाने वाली अनोखी संस्था है, अतः इसकी उत्पत्ति का मूल कारण भारतीय समाज की आदिम संस्कृति में ही ढूंढा जाना चाहिए। जब आर्य सर्वप्रथम भारत में आए तो यहाँ द्रविड़ संस्कृति का प्रभुत्व था। पूजा पाठ संस्कार तथा खान पान के व्यवहार में सुचिता एवं स्वच्छता को अत्यधिक महत्व प्राप्त था। ज्यो प्रजाति मिश्रण की संभावना बढ़ती गई, यहाँ के मूल निवासियों में निषेधों की धारणा बलवती होती गई, अतः वर्णों का परस्पर संपर्क भी समाप्त हो गया। पहले सामान्यतः ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति वैश्य क्षत्रिय तथा शूद्र स्त्री से विवाह कर लेता था, किंतु प्रजाति मिश्रण के भय से अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अंतः विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जो निरंतर कठोर होता चला गया। वर्ण व्यवस्था खुली थी, किंतु बाहरी आक्रमणकारियों से संस्कृति को नष्ट होने से बचाने के लिए जो व्यवस्था पूर्णतः बंद कर दी गई, वही जाति व्यवस्था के रूप में अस्तित्व में आई। आलोचना। धर्म, जादू, पुनर्जन्म, राजनीतिक, सांस्कृतिक संघर्ष तथा जनजातियों में माना के प्रति विश्वास के भाव को हंटर ने जाति प्रथा की उत्पत्ति में सहायक माना है, अतः आलोचकों की दृष्टि में यह सिद्धांत अपने आप में अपूर्ण है। इस सिद्धांत से जाति प्रथा के विकास तथा इतिहास पर प्रकाश अवश्य पड़ता है, किंतु उत्पत्ति का कारण नहीं मिलता। नंबर 6, व्यवसायिक सिद्धांत। जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रकार्यात्मक या व्यवसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक जानसी नेसफील्ड हैं। उनकी मान्यता है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति व्यवस्था के उद्भव के लिए उत्तरदायी है। नेसफील्ड का मत है कि संपूर्ण हिंदू समाज भारत प्रजाति आधार पर एक ही प्रजाति का अंग है, उनमें परस्पर भेदभाव केवल व्यवसायों के आधार पर हुआ। एन प्रसाद ने नेसफील्ड के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रारंभिक हिंदू समाज में पुरोहिती पर केवल ब्राह्मण के पुत्र का अधिकार नहीं था, क्षत्रिय या शूद्र का पुत्र भी आवश्यक योगदान प्राप्त करके वेद निपुण हो सकता था, किंतु कालांतर में जब आत्म सुरक्षा तथा संतति की भविष्य सुरक्षा के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म संबंधी ज्ञान की अपनी संतानों तक ही सीमित कर लिया तो व्यवसायिक संरक्षण की भावना के कारण अन्य व्यवसाय से संबंधित लोग भी अनुवांशिक पेशे को अपनाने लगे। इस प्रकार जब व्यवसाय अनुवांशिकृत हो गया तो जाति व्यवस्था ने जन्म लिया। हिंदू समाज सदैव ही धर्म भीरू रहा है, अतः धर्म से संबंधित ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों को अपनी सुरक्षा के लिए क्षत्रिय महत्वपूर्ण लगे, अतः अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वालों को द्वितीय स्थान मिला। क्षत्रिय की शक्ति का स्रोत पूर्ति के माध्यम से होते हैं, अतः वैश्यों को अपने व्यवसाय के कारण द्वितीय स्थान मिला। शूद्रों का व्यवसाय सेवा तथा गुलामी का था, अतः वे चौथे स्थान पर रखे गए। शूद्रों में भी जिनका व्यवसाय घृणित माना गया वे अछूत बना दिए गए। आलोचना। इबेटसन का मत है कि सभी व्यवस्था महत्व की दृष्टि से समान है, भोजन के बिना तो ब्राह्मण भी जीवित नहीं रह सकता, अतः यह तो शूद्र मजदूर या कृषक को कुछ माना जाना चाहिए या वैश्य को, क्योंकि वह सामाजिक जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। अतः नेसफील्ड का यह सिद्धांत जातिगत संस्तरण का कोई आधार प्रस्तुत नहीं करता। हंटन, मजुमदार आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। डॉक्टर मजुमदार की मान्यता है कि प्रजाति तत्वों को स्वीकार करना नेसफील्ड की भूल है, क्योंकि यह तो हो सकता है कि वर्णों में बहुत ज्यादा प्रजाति अंतर ना हो, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रमाणित होता है कि उच्च जातियों तथा अति निम्न जातियों में बाहरी तौर पर ही स्पष्ट अंतर है। इस देश में रहने वाले लोग ऐसे प्रजाति अंतरों के कारण ही कई बार बिना पूछे व्यक्ति की जाति की सही जानकारी कर लेते हैं। जागरण हंटर का मत है कि पेशों के आधार पर यदि सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता तो हिंदू समाज के बहुसंख्यक वर्ग की जो कृषि करता है जाति एक ही होनी चाहिए थी। उत्तरी तथा मध्य भारत में कृषि का व्यवसाय सम्मानजनक है, किंतु दक्षिण भारत में जिसे अत्यंत निम्न माना जाता है, दूसरी ओर सुनार की स्थिति उच्च होती है तथा डालियां बनाने वाले व्यक्ति की स्थिति नीची। यदि धन की स्थिति के कारण निर्धारण होता तो वैश्य की स्थिति उच्चतम तथा ब्राह्मण की निम्नतम होनी चाहिए थी। अंटन का यह भी मत था कि नेशविल एक ओर तो धर्म के तत्वों को जाति की उत्पत्ति का कारण नहीं मानते, दूसरी ओर धर्म के से संबंधित होने के कारण ब्राह्मणों की स्थिति को उच्चतम मानते हैं। यह विरोधाभासी विचार है। नंबर 7 उद्विकासीय सिद्धांत। इबेटसन के अनुसार जाति की उत्पत्ति का कारण सामाजिक संरचना में निरंतर परिवर्तन, विकास तथा गतिशीलता का क्रम है। जनजातीय जीवन में जब आर्थिक आवश्यकताओं का अनुभव हुआ तो व्यवसायिक संघ बने। संघ का धार्मिक मुखिया पुरोहित बनकर सर्वश्रेष्ठ पद पर जा पहुंचा। इन्हीं व्यवसायिक संघों के विभिन्न रूपों ने जातियों का निर्माण किया। समाज के प्रारंभ में मानव घुमंतु खाना बदोश था, खाओ पियो और मर्ज करो उसका एकमात्र लक्ष्य था। चारागाह स्तर के पश्चात मनुष्य श्रम कार्यों को अपनाने लगा, अर्थात शूद्र जाति का उद्भव हुआ। इस श्रम कार्यों के माध्यम से जो अर्थोपार्जन कर समाप्त हो गए तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग देने लगे, वैश्य हुए। धन संपत्ति तथा आभूषण प्रेम के कारण मनुष्य में चोरी डकैती तथा असुरक्षा की भय व्याप्त हुआ। संरक्षण सुरक्षा के लिए जिन्होंने व्यक्ति तथा साहस के साथ समाज की रक्षा का दायित्व तो संभाला, वे क्षत्रिय कहलाए तथा सत्ता के मद में कहीं शक्तिवान पुरुष या बलवाली राजा को अपने कर्तव्य से चूत अथवा दिग्भ्रांति न हो जाए, उसके बाद समाज के मार्गदर्शन तथा धार्मिक निमंत्रण के लिए जिन्होंने सत्य अहिंसा त्याग तथा धर्म की राह अपनाई में ब्राह्मण हुए। इस प्रकार क्रमशः जातियों का विकास तथा संस्करण हुआ। आलोचना। हट्टन ने उद्विकासी सिद्धांत को असत्य माना है। उद्विकास के जिन अस्त्रों की कल्पना इबेटसन ने की है वह तो संपूर्ण समाज पर एक सी लागू होती है, तथापि जाति का अस्तित्व भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं पाया जाता। नंबर 8 वर्ण का सिद्धांत। डॉक्टर गार्ल थ्रेस मीज ने वर्ण को जाति की उत्पत्ति का कारण माना है। समाज में जब वर्ण व्यवस्था थी तब व्यक्ति की योग्यता तथा उसके गुण कर्म के आधार पर समाज में उसकी स्थिति का निर्धारण होता था। जब एक वर्ण के लोगों द्वारा किसी व्यवसाय को अपनाने पर समाज द्वारा प्रशंसा या ज्ञान प्राप्त होने लगी तो प्रशस्त व्यवसाय के लोगों ने दूसरा व्यवसाय अपनाना बंद कर दिया तथा अपना व्यवसाय दूसरों के लिए वर्जित कर दिया। अंततः वर्ण समाप्त हुआ, जाति ने जन्म लिया। आलोचना। डॉक्टर यन प्रसाद का तर्क है कि यह सिद्धांत व्यवहारिक आधार पर असत्य है, क्योंकि गुण तथा उपयोगिता की निर्धारक वर्ण व्यवस्था तो वास्तव में हिंदू समाज में कभी थी ही नहीं। जब वर्ण व्यवस्था थी तब भी वर्ण भेद तथा खान पान के निषेध पाए जाते थे, अतः यह कहना कि जाति का जन्म वर्ण के कारण हुआ नितांत गलत है। प्राचीन दस्तावेज तो यह प्रमाणित करते हैं कि वर्ण के नहीं अपितु वर्ण की समाप्ति के कारण जाति प्रथा का जन्म हुआ। निष्कर्ष। उपरोक्त सभी सिद्धांत आंशिक रूप से सत्य तथा आंशिक आधार पर असत्य भी हैं। जाति प्रथा की जटिल संरचना के कारण यह निश्चित करना अत्यंत कठिन है कि कौन सा एकमात्र कारण इसकी उत्पत्ति का निर्णायक हो सकता है। विस्तृत विवेचना से इतना अवश्य स्पष्ट होता है कि सभी कारण तथा कारक मूल रूप से सहयोगी रहे। जाति तथा उपजाति में अंतर। जाति और उपजाति में अंतर के प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। जो लोग उनका सैद्धांतिक रूप में अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि सैद्धांतिक दृष्टि से जिस भी समूह में जाति की विशेषताएं पाई जाती हैं उसे जाति ही कहना चाहिए, चाहे वह अपने को उपजाति ही क्यों न कहता हो। दोनों में अंतर करना निरर्थक है। व्यवहारिक दृष्टि से अध्ययन करने वाले का कहना है कि दोनों का अलग अस्तित्व है। गेटे का कहना है कि यदि अंतर विवाह अपनी जाति का आधार माना जाए तो उपजाति को आजाति के रूप में स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वह भी अंतर विवाही समूह है, किंतु यदि उपजाति को जाति मान लिया जाएगा तो जातियों की संख्या असंख्य हो जाएगी और हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचेगी क्योंकि वे जाति और उपजाति को अलग अलग महत्व देते हैं। उपजातियों में जाति व्यवस्था के समस्त रचनात्मक तथा सांस्कृतिक पहलुओं का समावेश नहीं होता। केतकर ने दोनों में कोई अंतर नहीं समझा। उनके अनुसार दोनों सापेक्ष अवधारणाएं हैं। उपजाति का आधार जाति है, जाति बड़े और उपजाति छोटे समूह का नाम है। हंटन ने भी दोनों में कोई भेद नहीं माना है। उनके अनुसार जब जाति का कोई भाग व्यवसाय, भाषा या स्थान परिवर्तन के आधार पर मुख्य समूह से अलग हो जाता है तो उसे उपजाति कहा जाता है। डॉक्टर घुरिये के अनुसार उपजातियों को स्वतंत्र जातियों के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। उनका कहना है कि खान पान और सामाजिक संपर्क दृष्टि से उपजाति के लोग जाति के अन्य भागों की अपेक्षा अपनी उपजातियों के सदस्यों को अधिक निकट समझते हैं। लीच ने भी स्वतंत्र समूह के रूप में स्वीकार किया है। जाति और गोत्र ने विद्वानों की जो परिभाषाएं की है उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि गोत्र सामान्य पूर्वज से उत्पन्न परिवारों का समूह है, जबकि जाति एक अंतर्विवाही समूह अथवा अंतर्विवाही समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता अनुवांशिक होती है, जिसके सदस्य परंपरागत पेशा करते हैं तथा जिसके सदस्यों पर खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध है। जाति गोत्र से बड़ा समूह है। दोनों में निम्नलिखित अंतर है। नंबर एक, जाति एक संगठित वास्तविक संस्था है जबकि गोत्र कल्पना पर आधारित समूह है। गोत्र के सदस्य एक पूर्वज से उत्पत्ति और रक्त संबंध होने का विश्वास करते हैं जबकि जाति के सदस्य एक पूर्वज से उत्पत्ति का दावा नहीं करते, जबकि जाति अंतर्विवाही होती है। गोत्रों में ऊंच नीच की भावना नहीं होती जबकि जातियों में होती है। गोत्रों में सदस्यों पर खान पान, व्यवसाय और सामाजिक संपर्क संबंधी प्रतिबंध नहीं होते जबकि जाति में होते हैं। जाति और प्रजाति दोनों पैतृकता पर आधारित होते हैं। दोनों की सदस्यता जन्म से होती है। दोनों के विशिष्ट नाम होते हैं तथा दोनों अंतर विवाही होते हैं, पर भी दोनों में अंतर है। नंबर एक, जाति एक सामाजिक संस्था है जिसके सदस्यों पर खान पान, विवाह और सामाजिक संपर्क संबंधी प्रतिबंध होते हैं। प्रजाति शारीरिक लक्षणों की समानता पर आधारित एक मानव समूह है। नंबर दो, जाति व्यवस्था सामाजिक संस्करण की व्यवस्था है, उसमें ऊंच नीच की भावना होती है। प्रजाति श्रेष्ठता का भी विचार प्रचलित है, परंतु वैज्ञानिक आधार पर किसी की श्रेष्ठता निर्धारित नहीं की गई है। जाति और प्रजाति दोनों अंतर्विवाही हैं, परंतु जातियों के विवाही संबंधी प्रतिबंध अपेक्षाकृत अधिक कठोर होते हैं। नंबर चार जाति का निश्चित परंपरागत व्यवसाय होता है, प्रजाति के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। नंबर पाँच, जाति में खान पान संबंधी प्रतिबंध होते हैं जबकि प्रजाति में इस प्रकार का कोई निषेध नहीं होता है। नंबर छह, प्रजाति की धारणा मूलतः प्राणी शास्त्रीय है जबकि जाति की सामाजिक है। जाति और जनजाति, जाति के तरह जनजाति का भी एक सामान्य नाम होता है, यह भी विवाह संबंधी निषेध लागू करती है, फिर भी दोनों में काफी अंतर है। जाति एक सामाजिक संस्था है जो भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध नहीं है। जनजाति एक स्थानीय समूह है जो एक निश्चित भूभाग में रहता है। भौगोलिक एकता, सामान्य भाषा और नैतिक नियम जनजाति सफलता के आधार हैं। जाति सफलता का आधार जन्म है। जाति के सदस्य किसी काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति नहीं मानते। जनजातियां इस प्रकार का विश्वास करती हैं, जैसे टोटम की कल्पना। नंबर चार, प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है जबकि जाति एक सामाजिक संस्था है जिसका कोई राजनीतिक स्वरूप नहीं है। खान पान, व्यवसाय और सामाजिक सहवास के संबंध में जाति अपने सदस्यों पर प्रतिबंध लगाती है जबकि जनजाति ऐसा नहीं करती है। जातियों में ऊंच नीच और अस्पृश्यता की भावना होती है जबकि जनजातियों में इस प्रकार की भावना नहीं पाई जाती है। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन कर सामाजिक संस्करण को जन्म देती है। जनजाति ऐसा नहीं करती है। जनजातियों में अंतर विवाह का नियम कठोर नहीं है। जाति और वर्ग, जाति और वर्ग दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं, परंतु दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। दोनों में निम्नलिखित अंतर है। नंबर एक, जाति बंद होती है जबकि वर्ग खुला होता है, अर्थात सामाजिक स्थिति में परिवर्तन से वर्ग की सदस्यता बदल जाती है। जैसे धन हो जाने के बाद गरीब धनी वर्ग में चला जाता है। जाति का आधार जन्म होता है जबकि वर्ग का आधार सामाजिक स्थिति होती है। जाति की सदस्यता प्रदत्त है, यह जन्म से मिलती है। वर्ग की सदस्यता अपने प्रयास, अपनी कुशलता से अर्जित की जा सकती है। जाति में व्यवसाय, विवाह, खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध होते हैं जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता। वर्ग जाति की अपेक्षा अधिक अस्थिर होता है। वर्गों की अपेक्षा जातियों में संस्करण अधिक निश्चित और स्पष्ट होता है। वर्ग अंतर्विवाही नहीं होते जबकि जातियां होती है। जातियों का सामान्य वर्गीकरण कीजिए। इस वर्गीकरण। इस समय हिंदू समाज में लगभग 3000 जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। सर रिजले ने इन्हें समानतः 7 भागों में बांटा है। नंबर 1, जनजातीय प्रारूप। सभ्य तथा विकसित हिंदू समाज के संपर्क में आने पर कुछ प्राचीन जनजातियों ने अपने को उसके अंग के रूप में परिवर्तित कर लिया है। नंबर 1, परिवर्तित कर लिया है, उन्होंने अपना मौखिक नाम बदल दिया है तथा अपने धार्मिक स्वरूप के साथ हिंदू देवी देवताओं की पूजा स्वीकार कर ली है। रिजले का विश्वास है कि शूद्र वर्ग की जातियां प्रारंभ में द्रविड़ थी। नंबर 2, व्यवसायिक प्रारूप। वर्ण का सिद्धांत कर्म पर आधारित है। प्रारंभ में व्यवसायों को 4 भागों में बांटा गया, 4 कर्मों में बांटा गया। बाद में सामाजिक जटिलता बढ़ने से कर्मों की संख्या बढ़ती गई। विभिन्न कर्मों अथवा व्यवसायों में लगे लोग विभिन्न जातियों के रूप में परिवर्तित होते गए। तेली, कुंभकार, बड़ई, लोहार, सोहार, सुनार, चमार आदि इसके उदाहरण है। सांप्रदायिक प्रारूप। हिंदुओं के नए नए कर्मकांडों के साथ नए नए संप्रदायों का जन्म हुआ। प्रारंभ में इन संप्रदायों ने अपने को मूल जाति से संबंधित रखा, परंतु बाद में इन्होंने अपने को नई जाति में बदल डाला और अंतर्विवाही हो गए। नंबर 4, वर्ष स्वयं द्वारा निर्मित जातियाँ। इसके अंतर्गत वे जातियाँ आती हैं जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न संतानों से बनी हैं। वर्ण संकर संतानों से बनी जातियाँ भी इनके अंतर्गत आती हैं। नंबर 5, राष्ट्रीय प्रारूप। रिजले का कहना है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद जब किसी जनसमूह को हिंदू समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी तो वह एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गया। राधा किशोर गोपाल भंडारेकर का कहना है कि रट्टा जनजाति के लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद मरहट्टा अथवा मराठा जाति में बदल गए। नंबर 6, स्थानांतरण से निर्मित जातियाँ। एक प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में बसने वाले लोग रहन सहन, रीति रिवाज, पूजा पाठ और विवाह संबंधी कठिनाइयों के कारण दूसरे के निकट आए और अंतर विवाही हो गए। इस प्रकार वे एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गए। नंबर 7, रीति रिवाज में परिवर्तन से निर्मित जातियाँ। एक ही प्रजाति के लोग जब भिन्न भिन्न रीति रिवाज अपनाने से एक दूसरे से अलग होते गए तब वे एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गए। जाट और राजपूत एक ही प्रजाति के हैं, परंतु रीति रिवाजों में परिवर्तन के कारण वे दो जातियों में बट गए। डॉक्टर राधा किशन ने भी रिजले का यह विभाजन स्वीकार किया है। वर्ण संकर की अवधारणा। प्रस्तावना। प्राचीन भारतीय समाज में 4 वर्ण थे। सभी वर्ण के लोग अपने ही वर्ण में विवाह करते थे, परंतु जब कभी किसी वर्ण का पुरुष किसी अन्य वर्ण की कन्या से विवाह कर लेता था तो जो संतान उनसे पैदा होती थी उसे वर्ण संकर कहते थे। इस प्रकार वर्ण से पतित स्त्री पुरुषों की संतानें वर्ण संकर में गिनी जाती थी। यह एक प्रकार से 5वां वर्ण गिना जाता था। मनु ने मनुस्मृति में इसकी चर्चा की है। वर्ण संकर का स्थान समाज में सबसे नीचे था। ऐसा माना जाता था कि वर्ण संकर संतान में परिवार की मर्यादा नष्ट हो जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब स्त्रियां व्याभिचारिणी हो जाती हैं तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, जिससे कुल की मर्यादा छिड़ होती है और 7 पीढ़ी तक के पूर्वज नरक में गिर जाते हैं। अतः वर्ण संकर संतानों से परिवार को बचाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण संकर अंतर जाति विवाह से उत्पन्न उन संतानों को कहा जाता था जिनका कोई वर्ण नहीं होता था तथा जिनका समाज में कोई स्थान भी नहीं होता था। अपनी हीनावस्था के कारण वर्ण संकर को निर्देश था कि वह नाटो की तरह तमाशा दिखाकर जीवन यापन करे। वर्ण संकर का अर्थ। सृष्टि के अंतर्गत 3 देवताओं का नाम आता है। प्रथम ब्रह्मा, जिनका कार्य सृजन करना है। द्वितीय विष्णु, जिनका कार्य रक्षा अथवा पोषण करना है। तृतीय महेश, जिनका कार्य विनाश करना है। इन्हीं महेश का द्वितीय नाम शंकर भी है। इस प्रकार शंकर का कार्य मूल रूप से विनाशक है, परंतु रक्षा का भी भार इनके हाथ सौंप दिया गया है। मनु ने केवल 4 प्रकार के वर्णों का ही उल्लेख किया है और वे कहते हैं कि कोई 5वां वर्ण नहीं होता है, पर उन्होंने एक विशेष प्रकार की जाति का उल्लेख किया है जिसका नाम शंकर जाति रखा है। शंकर का अर्थ है विनष्ट, इसलिए शंकर जाति से तात्पर्य उस जाति से है जिसका उद्भव विनष्ट रूप में हुआ हो, अर्थात जिसमें जाति शुद्धता ना हो। इसे वर्ण संकर भी कहते हैं। इसका भी अर्थ वही है कि यह वर्णों का विनष्ट स्वरूप है। संकर जाति और वर्ण संकर के अर्थ में अंतर इतना ही प्रतीत होता है कि पहला परिणाम को लेकर नामकरण करता है, दूसरा उत्पत्ति के स्रोत को लेकर। इतना तो स्पष्ट है कि विनाश का यहाँ अर्थ है अशुद्धता, यही इसका प्रधान तत्व है। यह जाति अशुद्धता पितरों में हुए असवर्ण वैवाहिक संबंध से जाती है। नारद के अनुसार जो संतति वर्णों के उल्टे क्रम के संयोग से उत्पन्न होती है वह वर्णसंकर कहलाती है। गौतम के अनुसार वर्णों के बीच जो असंरक्षित संबंध है वही संकर धर्म है। विस्पति ने कल्पतरु को उद्धृत करते हुए लिखा है कि अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों प्रकार के सहयोग द्वारा उद्भूत जातियां वर्ण संकर कहलाती है। यही विचार वीताक्षरा से भी स्पष्ट है। मनु के अनुसार जब एक वर्ण का पुरुष दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता है और वह भी सगोत्र हो जो विवाह के लिए वर्जित होता है, तो इसके द्वारा जिस संतति का जन्म होता है वही वर्ण संकर कहलाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल रूप में असवर्ण सहयोग ही एकमात्र वह कारण है जिसके द्वारा उत्पन्न संतति वर्ण संकर कहलाती है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि वह कौन से कारण है जिनके द्वारा स्त्री पुरुष में असवर्ण संपद स्थापित होते हैं। यही अंततोगत्वा वर्ण संकर की उत्पत्ति के कारण कहे जा सकते हैं। वर्ण संकर उत्पत्ति के कारण। वर्ण संकर की उत्पत्ति के विभिन्न कारणों को निम्नलिखित आधार पर समझा जा सकता है। नंबर एक, विदेशी संबंध। भारत का विदेशी संपर्क प्रारंभ से ही इतना घनिष्ठ हो गया था कि विदेशी और भारतीय एक में घुल मिल गए थे। उन्होंने परस्पर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। इसके अनेकों उदाहरण का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे यूनानी शासक का हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होना तथा शक राजकुमारी का विवाह सातवाहन राजा के साथ होना तथा इस विदेशी और भारतीय सहयोग के स्थापित होने के दो कारण थे। प्रथम, भारत प्रारंभ से ही एक संपन्न देश था, अतः विदेशी यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से आते रहते थे, जिनमें कुछ यहीं बस गए और अपना परिवार बना लिए। द्वितीय, भारतीय संपत्ति और वैभव से आकृष्ट विदेशी विभिन्न विदेशी जातियां समय समय पर भारत पर आक्रामक होकर आई और यहीं बस गई, जो यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित कर यहीं की मिट्टी में आज भी पड़ी है। इस प्रकार विदेशियों के साथ वैवाहिक संपर्क केवल आसवर्ण ही नहीं परंतु इससे भी कुछ अलग था। अतएव इस संपर्क से उद्धृत संतति को किस वर्ण में गिना लिया जाए कहना कठिन है, इसलिए इन्हें वर्ण बहिष्कृत मानकर संकर जाति में स्वीकार किया गया होगा। नंबर दो, अंतर विवाह प्रणाली। भारत एक विशाल देश है जहाँ के निवासियों ने समय समय पर ही नहीं अपितु स्थान स्थान पर भी ब्रह्मा प्रभाव के कारण अपनी परंपरागत मर्यादाएं बदलते रहे। यहाँ यह इसके प्रवृत्ति के लचीलापन का द्योतक है। कुलीन विवाह की जो परंपरा समाज में व्याप्त थी उसके साथ ही अंतर विवाह प्रणाली भी प्रचलित हुई। इसमें दो असवर्णों का संपर्क दो विधियों से स्थापित होने लगा, जिसमें क्रमशः अनुलोम तथा प्रतिलोम की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार के सवर्ण असवर्ण संपर्क की संतति को संकर वर्ण की कोटि में रखा गया। नंबर तीन, रक्त की शुद्धता। सर्वदा से भारतीय अपनी रक्त शुद्धता के प्रति अपना दृष्टिकोण संकुचित रखे हैं। वे किसी प्रकार जाति शुद्धता को खोने के लिए तैयार नहीं हो सकते। अतः रक्त संबंधी शुद्धता और कठोर वृत्ति ने सामाजिक विभेद उपस्थित करने का कारण लेकर इस प्रथा को जन्म दिया। उत्पत्ति के सिद्धांत। महाभारत का प्रसंग। इस विषय पर महाभारत से व्यापक प्रकाश पड़ता है। शांति पर्व के अंतर्गत महाराज जनक ने पूछा, जब संपूर्ण प्राणी उसी के कारण संसार में जन्म लेते हैं तो फिर इसमें इतना अंतर क्यों? पराशर ने कहा कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से यह कथन उपयुक्त है कि जिससे संतति का जन्म होता है उसी की वह संतति होती है, दूसरे की नहीं हो सकती, इसलिए उत्पन्न करने वाले के अनुरूप ही संतति भी होगी। पर जब कभी ऐसे परिस्थिति आवे जहाँ बीज और भूमि दोनों ही है हो तो यह भी स्वाभाविक है कि उत्पादक के अनुरूप संतति नहीं हो सकती। इसलिए अद्यपि पिता के अनुरूप ही ब्रह्मा की कृपा से संतति होती है, परंतु फिर भी माति पक्ष में पिति पक्ष की अपेक्षा हीनता रहने पर संतति में अंतर होना स्वाभाविक है और सत्य है। परंतु इन्होंने इसके आगे कहा कि चार वर्णों की ही उत्पत्ति ब्रह्मा ने की है परंतु इन चारों वर्णों के परस्पर वैवाहिक संबंध होने के कारण चारों वर्णों से इतर जातियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार की मिश्रित जाति की तालिका में 14 जातियों का उल्लेख उन्होंने किया। नंबर दो, विवाह संबंधी विधान। महाभारत में चारों वर्णों का विवाह अपने ही वर्णों में करने का विधान किया गया। एक विद्वान के शब्दों में भीष्म ने इसे स्वीकार करते हुए यह भी कहा कि कोई भी वर्ण अपने से नीचे के वर्ण की लड़की से विवाह कर सकता है। इस प्रकार के संबंध के कारण उत्पन्न संतति पिता के ही वर्ण की होती है, परंतु यदि पिता के वर्ण से ठीक नीचे नहीं पर वर्ण से ठीक नीचे नहीं पर बाद के वर्ण की स्त्री से जिस संतति का जन्म होता है वह विशेष निम्न कुल का होने के कारण माती वर्ण की ही मानी जाती है, पर जो पुरुष अपने से ऊंचे वर्ण की स्त्री से विवाह करता है उससे उत्पन्न संतति चारों वर्णों से इतर मानी जाती है। इस प्रकार यही व्यवहारिक संबंध विभिन्न मिश्रित जातियों एवं उपजातियों के द्वारा उद्भव का कारण बन सकी। नंबर तीन, मनु द्वारा प्रतिपादित विधान। मनु के अनुसार जब सवर्ण विवाह हो तो संतति पिता के वर्ण की होती है, पर यदि स्त्री पति से ठीक नीचे के वर्ण की हो तो तब भी यद्यपि वह संतान पिता के ही वर्ण की मानी जाती है, परंतु वहाँ माता का वर्ण चूंकि पिता के वर्ण से थोड़ा सा नीचा होता है इसलिए बालक का वर्ण भी पिता के वर्ण से कुछ हीन हो जाता है। पर इस प्रकार के विवाह में वास्तविक रक्त मिश्रण नहीं होता। वास्तविक मिश्रण तो वह होता है जब माता का वर्ण पिता के वर्ण से 2-3 सोपान नीचे हो। इसलिए ब्राह्मण पिता और वैश्य माता के द्वारा प्रजनित संतान अम्बष्ट कही जाती है, तब ब्राह्मण पिता और शूद्र माता द्वारा प्रजनित संतान निषाद कही जाती है। उनके अनुसार प्रतिलोम विवाह के कारण जो मिश्रित रक्त संबंधित पुत्र उत्पन्न होता है वह भी वर्ण बहिष्कृत होता है। इस संबंध में इन्होंने उल्लेख किया है कि क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मणी स्त्री के संयोग से उत्पन्न पुत्र शूद्र कहलाता है। वैश्य पुरुष तथा क्षत्राणी से उत्पन्न संतान माघध कहलाती है। पुनः वैश्य पुरुष और ब्राह्मणी स्त्री से उत्पन्न संतान विदेह कहलाती है। आज तीसरी बात मनु ने इस संबंध में कहा कि इन नवीन जातियों में पुनः अंतर विवाह कारण नवीन प्रकार की विभिन्न उपजातियों का जन्म हुआ, जैसे कर्ण प्लस वैश्य बराबर तक्षक प्लस वैश्य बराबर चर्मकार आदि। इन संपूर्ण संबंधों से उत्पन्न उपजातियों को मनु ने संकर जाति माना है। इस प्रकार उत्पन्न जातियों की संख्या उन्होंने 57 बताया है। डॉक्टर शिव स्वरूप सहाय के शब्दों में, परंतु यहाँ एक कठिनाई है कि विभिन्न लेखकों द्वारा एक ही प्रकार की संतति को भिन्न नामों से पुकारा गया है। इस संबंध में हम यहाँ एक उदाहरण ले सकते हैं कि ब्राह्मण पिता और क्षत्राणी माता की संतान को वैधायन ने ब्राह्मण, शंख लिखित ने क्षत्रिय, गौतम ने अवष्ट, याज्ञवल्क ने मूर्धाभिषिक्त आदि बताया है। इसका कारण यह है कि निकिष्ट अस्तित्व स्थिति होने के कारण विभिन्न धर्माधिकारियों ने अपनी इच्छा के अनुसार इनका विभिन्न नामकरण किया है। इसके साथ ही हम यह भी पाते हैं कि जहां इस प्रकार की संतानें जाकर बस गईं, उस स्थान का नाम भी इनके नाम के पीछे रख दिया गया, जैसे मगध, विदेह आदि। नंबर चार, शुक्र नीति का सिद्धांत। ब्राह्मण तथा छात्राणी द्वारा उत्पन्न पुत्र की केवल ब्राह्मण कहा जा सकता है और दूसरे अनुलोम संबंध से उत्पन्न पुत्र शूद्र की कोटि में परिगणित किया जाता है, परंतु प्रतिलोम विवाह द्वारा उत्पन्न पुत्र नवीन जाति में परिगणित किया जाता है, जिसे संकर जाति कहते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपयुक्त सिद्धांतों एवं विचारों के अनुसार समाज में संकर जातियों की अधिकता हुई तथा वर्ण संकर को समाज से बहिष्कृत इसलिए माना जाता था कि प्राचीन काल में रक्त की शुद्धता पर अधिक जोर दिया जाता था। वर्ण संकर समाज में गर्हित तथा घृणित मात्र था।